الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. هم سورة الفاتحة کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے پہلی آیت مکمل کی ہے. آج دیکھتے ہیں دوسری آیت کا ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، 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 یہ اس کا روٹ ہے جس سے یعنی یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا معنی بہت زیادہ مہربان. الرحیم اس کا بھی مادہ روٹ سیم ہی ہے، رحم، اور بار بار رحم فرمانے والا. مالک، مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے. دین کا معنی ویسے ہم مذہب کرتے ہیں، لیکن بدلہ بھی معنی ہوتا ہے. یہ صرف کا، تیری کا پروناؤن ہے جو ایا کے ساتھ لگا ہے. نعبدو عین با دال سے ہے، عبادت اسی سے ہے، نون شروع میں لگا جس کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں. یہاں تک آج ہم انشاءاللہ تعالی لیسن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے، امید ہے آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا، اور اس میں کچھ پوائنٹس نکالے ہوں گے اپنے لیے عمل کے. یاد رکھیے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کے پڑھیے گا کہ قرآن کو میں نے اپنا ساتھی بنا لینا، اور کب تک؟ جب تک آخری سانس نہ آ جائے تب تک اس کو میں نے ساتھی بنانا. تبھی جب آپ اس کو اپنا ساتھی بنا لیں گے تو اس کے بعد موت سے لے کر جنت میں داخلے تک یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. تو طے کر لیں سب سے پہلے کہ میں نے ساتھی بنانا ہے. بس ساتھی بنانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ دیکھیے، ساتھی ایسے نہیں بنتا کہ آپ مثلاً آپ دن میں 5 دفعہ مسجد جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی اگر الگ سلیک کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ ان کو اپنے ساتھی نہیں کہتے، بس سلام دعا والی بات ہوتی ہے. ساتھی آپ کسی کو تب کہتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا ساتھی ہے. جب اس کے ساتھ آپ کلوز ہو جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کو اگر آپ نے ساتھی بنانا ہے تو ایسے نہیں چلے گا کہ بس تھوڑا سا پڑھ لیا، یا میں ہر روز تھوڑا سی تلاوت کر لیتی ہوں، یا میں سال میں ایک دفعہ دورہ قرآن کر لیتی ہوں. یہ اس طرح سے ساتھی نہیں بنتے. قرآن ساتھی تب بنے گا، اور قرآن کے ساتھ جو جڑنا ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے وقت میں سے وقت اس کے لیے نکالیں، تنہائی میں بھی قرآن ہو اور محفل میں بھی قرآن ہو، تب آپ کو قرآن کی برکات بھی ملیں گی اور آپ کو نظر آئیں گی اپنی زندگی میں اس کی رحمتیں. ابھی تک، آج تک جو آپ پڑھتے رہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمندر کے اوپر اوپر ہی رہے، لیکن جو سمندر کے اندر سے جوہرات نکالنا چاہتا ہے، موتی نکالنا چاہتا ہے، اس کو سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے. تو جب آپ قرآن کے بھی موتی چننا چاہیں تو آپ کو اس میں ڈوبنا پڑے گا، तब जाके आपको मोती हासिल होंगे। अब आपने पहली आयत देखी, अगर और भी वक्त होता तो इसके ऊपर और वक्त लगाया जा सकता था। मैंने आपको बताया ना, सूरह फातिहा ये एक सूरत है जिसके ऊपर पूरी पूरी जिल्दें तफसीरों की लिखी गई, एक सूरत के ऊपर इतनी अहम है और इसमें इतनी ज्यादा गहराई है। आप जब भी कुरान करीम पढ़ें तो इसको इस सोच के साथ पढ़ें कि मेरे लिए इसमें क्या है, मुझे इसमें से क्या हासिल हुआ है। ये नहीं कि हमने बस सुन लिया और फिर समझ लिया कि क्लास हमने ले लिए। देखें कि कुरान मुझसे मुखातिब है और मुझे आज क्या दे रहा है। तो जहन में ये रखते हुए आपने कुरान करीम को समझना। मैं आपको अमल की बातें दिया करूंगी एंड में, जिनको आपने पूरे हफ्ते में कोशिश करनी है कि इनको आप प्रैक्टिस करें। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने तौर पे भी सोचेंगे कि इसमें से मेरे लिए अमल की बातें क्या निकलती। जैसे आपने अब पहली आयत समझी तो इसके बाद आपका काम यह कि अकेले बैठ के बार बार इसको पढ़ें और सोचें इसमें क्या बात है जिसपे मैं अमल करूं या जो मेरे लिए मैसेज है। जब ये आप सोचेंगे ना, यही तदब्बर है, इसी को तदब्बर कहते हैं। और ये बहुत बड़ा खजाना है जो आपको मिल जाएगा अगर आपको तदब्बर करना आ गया। एक एक आयत में तदब्बर करें, वरना एक आयत क्या आप 100 आयत से पूरे पारे से भी जल्दी से गुजर जाएं तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कुरान के अजाइब कभी खत्म नहीं होते। सारी जिंदगी भी आप खपा देना, तहकीक करते रहें और सब मिलके करें, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, कुरान के अजाइब खत्म नहीं होंगे। ये कभी पुराना नहीं होता पढ़ने से। तो अब हमने जैसे अलहम्द को देखा, सिर्फ एक एक लफ्ज को ही हमने देखा, तो हमें पता चल गया कि जो भी तारीफ है, जो भी हम्द है और जितना भी शुक्र है, शुक्र और तारीफ दोनों इसके अंदर आ गए। और हम्द किस बात पे है? अल्लाह ताला की जात की वजह से भी हम्द है, उसकी उसकी सिफात की वजह से भी उसकी हम्द है और उसके एक्शंस, उसके अफआल की वजह से भी उसकी हम्द है। वो ये नहीं कि हमारा हम्द की जरूरत है उसको, वो हम्द डिजर्व करता है, जरूरत नहीं है हमारी, वो डिजर्व करता है, वो इसका मुस्तहिक है। इसलिए हम हो या ना हो, ये कायनात हो या ना हो, वो काबिले हम्द है, काबिले तारीफ है। और हमने ये देखा कि जब अलहम्द हमने कह दिया, तमाम की तमाम यानी हर कैटेगरी की तारीफ, हर तरह की जो तारीफ है वो उसके लिए है, तो उसके बाद क्या हमने, जब कोई काबिले तारीफ चीज हमें नजर आई तो हमने ये सोचा कि असल तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला की, असल हम्द और असल शुक्र सिर्फ अल्लाह ताला का है। अगर किसी का हमने शुक्रिया अदा भी किया तो तब भी हमारे जहन में क्या ये बात थी कि असल शुक्र है अल्लाह तेरा ही है। बेशक इंसानों का शुक्रिया हम अदा करते हैं उनकी किसी चीज पे, लेकिन असल ए रब शुक्र तेरा ही है कि तूने ये सबब बनाया मेरे लिए। और अगर हमें कोई भी चीज नजर नहीं आती हम्द के लायक, तो फिर सोचें कि हमारी कोताह नजरी है, हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अल्लाह ताला की नेमतें इस कदर ज्यादा हैं कि अगर तुम गिनना चाहो भी तो उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते। कोई सुपर कंप्यूटर दुनिया का, कितनी अब कंप्यूटर फास्ट आ गए हैं ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की नेमतों को गिन सके, क्योंकि हर चीज दुनिया की, कायनात की हर चीज में जो भी पॉजिटिव पहलू है उसमें अल्लाह ताला की ही तारीफ है, बनाने वाले की तारीफ है। तो जैसे तफसीर खाजिन में एक इसराइली रिवायत है, इसराइली रिवायत को हम ना तो कह सकते हैं कि बहुत ऑथेंटिक है, ना हम उनको डिनाई करते हैं। तो उसमें एक रिवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा एक कुत्ते को देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। तो बशरी तकाजा होता है, इंसान को कराहत आती है, तो उनको कराहत आई, अल्लाह ताला ने कुत्ते को जुबान दे दी। वो बोला, ए अल्लाह के नबी, तू अगर नबी बना है तो क्या अपनी मर्जी से बना, और मैं अगर कुत्ता बनाऊं तो क्या अपनी मर्जी से बनाऊं। अगर तुझे मेरे कुत्ते होने पर एतराज है तो बनाने वाले से पूछ, और अगर अपने नबी होने पे फख्र है तो तेरी तारीफ नहीं, ये तो बनाने वाले की तारीफ है। जो कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो रोने लगे, और इतना रोए कि हमेशा रोते रहे इस बात के ऊपर। यानी कोई भी काबिले तारीफ चीज जो है ना, उसमें देखा करें कि ये अल्लाह ताला की ही देन है, जो भी मुझे नजर आ रहा है या जो मुझे नहीं नजर आता। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको पसंद आती है, जिसमें कोई शुक्र का पहलू आपके लिए मौजूद हो, उसमें भी असल शुक्र अल्लाह ताला का ही है। अगर सिर्फ दिखाई देने वाला हाथ जो है उसी का आप शुक्र अदा करते रहें, और बाज़ लोग थैंक यू तो लोगों का करते हैं लेकिन कभी भी पीछे उनको अल्लाह ताला की ज़ात नज़र ही नहीं आती, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और अल्लाह ताला से बहुत गिले शिकवे रहते हैं। हालांकि असल में शुक्र तो वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ताला के एहसानात हमारे पर बहुत ज्यादा है, हर नेमत उसकी तरफ से, और कोई भी नेमत जो हमें मिली है वो हमारा हक नहीं था। इमाम कुर्तुबी इसीलिए फरमाते हैं कि जिन इनामात को गिना ही नहीं जा सकता, उनका शुक्र कैसे अदा किया जा सकता। और जब शुक्र हर नेमत पे अदा करना जरूरी है, तो हम कैसे फिर शुक्र अदा कर सकते। तो बजाहिर तो शुक्र अदा नहीं हो सकता, मगर अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने एक कलमा ऐसा बना दिया, अगर सारे जहान की नेमतों को एक लुकमा बना दिया जाए, एक निवाला बना दिया जाए, और इंसान वो निवाला अपने मुंह में डाल के अपने हलक से नीचे उतार ले, यानी सारी दुनिया की नेमतें उसको हासिल हो गई, तो एक कलमा अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो कह दे तो शुक्र अदा हो जाता है। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी, और वो कलमा क्या है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा है। इसलिए इस कलमे को सोच समझ के कहा करें, और ये सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला की जात हम्द के लायक है, मैंने आपको क्या बताया, उसकी सिफात भी और उसके अफआल भी। तो उसके अफआल से कभी नाराज ना हो कि ये कहें कि आप ये काम हो गया तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, कोई काम आपकी मर्जी के बगैर भी हुआ तो अल्लाह ताला के इज़न से ही हुआ, उस पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। तो कभी भी फिर आप अल्लाह ताला से नाराज नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि आप तो वो हैं जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो तारीफें करने वाले हैं अल्लाह ताला के हर एक्शन के ऊपर उसकी, और हर उसकी सिफत पे और उसकी जात पे। और फिर हमने अल्लाह ताला का नाम देखा था जिसका कोई सानी नहीं, जैसे अल्लाह ताला की जात का कोई सानी नहीं, उसके नाम का भी कोई सानी नहीं, उसके नाम का कोई, ये वाहिद है, इसका कोई तस्निया नहीं यानी ड्यूल नहीं है, कोई जमा नहीं है, कोई मोनस नहीं है, इतना खूबसूरत नाम है, इसके हुरूफ हटा भी दें तो इसकी उसकी जात या सिफात में से कोई ना कोई माना जरूर निकलता है। जैसे अलिफ हटा दिया तो लिल्ला रह गया, लिए अल्लाह के, लाम अलिफ और लाम दोनों हटा दें तो लहू रह गया, लहू माफिस समावाति व माफिस, उसी के लिए है जो आसमानों में और जमीन। और हु कह दे तो फिर भी माना बनता है वही। तो उसका नाम भी इतना कंप्लीट है, और अल्लाह ताला के नाम को छोड़ के खुदा इस्तेमाल करना, ये उलमा ने बहुत ज्यादा इसको पसंद नहीं किया, अच्छा नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि हम जैसे कहते हैं ना, खुदा ने ये पैदा किया, खुदा एक नहीं, इसलिए कि खुदा इसम नकिरा है। खुदा तो कई हो सकते हैं ना, कोई झूठा खुदा, कोई सच्चा खुदा, कोई छोटा खुदा, कोई बड़ा खुदा। हर एक जब उसके सामने आप खुदा कहेंगे ना, तो उसके दिमाग में कोई अपना ही कोई कॉन्सेप्ट आएगा। यानी कोई किसी के दिमाग में ईसा अलैहि सलाम आ जाएंगे, किसी के दिमाग में कोई देवी देवता आ जाएंगे, कोई बुत आ जाएगा। तो जब आप कहते हैं अल्लाह, तो फिर कोई और अल्लाह नहीं। याद रखें, किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया कि वो अल्लाह है। अल्लाह ताला का नाम उसके साथ ही खास है। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला का इसमें आजम है, क्योंकि इसके अंदर तमाम सिफाती नाम इस एक अल्लाह के लफ्ज़े जलाला में तमाम सिफाती नाम है। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह मलिक है, अल्लाह अल कुद्दूस है। ये सारे नाम, जैसे हम ये नहीं कह सकते अल कुद्दूस जो है वो अर रहमान और अर रहीम और अल मलिक और ये सब है, बल्कि अल्लाह का जो नाम है इसके अंदर तमाम सिफाती नाम आ जाते हैं। बाज अर रहमान की आगे हम बात करेंगे, उसको भी ईसा मालम कहते हैं। तो अल्लाह ताला का ये नाम उसका जाती नाम है, बाकी उसकी सिफात है, सिफाती नाम है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि खुदा कहने की बजाय अल्लाह कहना चाहिए हमेशा। इसी वजह से बाज लोग तो खुदा ना खास्ता भी नहीं कहते, ये फारसी का लफ्ज है, कहते हैं अल्लाह ना खास्ता। तो इतना ज्यादा वो कहते हैं कि खुदा हम क्यों कहें, हम तो अल्लाह ही कहेंगे। इसलिए कि खुदा डिफरेंट बात है, और उसमें वो माना नहीं आ सकता जो अल्लाह में है। और इसी तरह आज के दौर में बहुत सारे लोग आजकल इंग्लिश में कहें तो मदर नेचर या नेचर कहना शुरू हो जाते हैं, और उर्दू में कहें तो कुदरत कहना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है जब कोई कहता है ये कुदरत का कमाल है। जी, कुदरत ने उसको अता किया, कुदरत मेहरबान हो गई उस पर। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या है कुदरत? नेचर? नेचर से तो कुछ नहीं होता, बल्कि खुदा के लफ्ज को कहना भी फिर भी बेहतर हो सकता है, लेकिन कुदरत कहना सही नहीं है। यानी नेचर अपने आप से खुद काम कर रही है। नेचर, कुदरत के अंदर ये खासियत है कि वो भी मेहरबान हो जाए किसी के ऊपर, या वो भी किसी का कोई काम कर दे। तो एक मोमिन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जेब देता है कि वो अल्लाह सुबहाना व तआला का नाम ले, अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले, अल्लाह अज्जा व जल का नाम ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले। देखिए, हम लोगों के लिए जब हम उनके इज्जत देने लगते हैं ना, तो हम उनको कितने आगे पीछे नाम लगाते हैं, हजरत या मौलाना या हाफिज़ाहुल्लाह या रहिमहुल्लाह या रदियल्लाहु अन्हु, ऐसे हम देते हैं। लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला के लिए हमें भी चाहिए कि हम साथ खूबसूरत इजाफा करें, और अल्लाह ताला कहें, या जैसे मैंने आपको बाकी बातें कही, अल्लाह सुबहाना तआला कहें। तो अब हम जब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने देखा कि तमाम किस्म की हम्द, जितनी भी दुनिया में हम्द है, ये किसी की भी हो सकती है, वो किसी किस्म की भी हम्द हो सकती है, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, लिल्ला रब है जो। अब अल्लाह ताला कौन? जब तक आप जानेंगे नहीं ना कि अल्लाह ताला कौन है, तब तक आप उसकी सही से इबादत नहीं कर सकते। हम हक तो कभी भी अदा नहीं कर सकते इबादत का, लेकिन जो इबादत हमें जैसी करनी चाहिए, कभी हो नहीं सकती जब तक कि हम जानते नहीं है कि वो अल्लाह कौन है। आज अफसोस का मुकाम ये है कि अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं, असल में आप लोगों को ही कहती हूँ कि मतलब ना, आप अपने मुल्क के ऊपर कोई ऐसे लिखें, कोई मजमून लिखें, या अपने घर के ऊपर, या अपने बच्चों पे, या अपने और फैमिली रिश्तेदारों पे, तो आप कई सफ़ों पे लिख देंगे, इतनी बातें होंगी ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में आप क्या जानते हैं, आप एक मजमून लिखिए, तो शायद एक सफ़े से ज़्यादा भी ना आप लिख सकें। जबकि अल्लाह ताला वो है जिसकी बातें तो इतनी हैं कि दरख्त कलम बन जाए और समंदर स्याही बन जाए, और सारे दरख्त दुनिया के हर हर एक से कितने कलम निकलेंगे, और वो सब कलम लिखना शुरू करते हैं, और समंदर स्याही और सात समंदर जमा हो जाए, और इस स्याही से लिखा जाए, तो अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अफसोस है कि हम अपने बनाने वाले के बारे में ही नहीं जानते कि वो कौन है। जबकि उसका इदराक तो हम कर ही नहीं सकते, वो इतनी बुलंद हस्ती, हम नहीं उसको पूरी तरह जान सकते, जबकि हमारी तो हैसियत कुछ भी नहीं है। तो अब हम जब ये समझते हैं कि अल्लाह ताला तेरी जात इतनी बुलंद है और तेरी जात ऐसी है कि हम तो इदराक भी नहीं कर सकते, और सारी हम्द तेरी है, क्योंकि तेरे एहसानात इतने ज्यादा हैं, तो शुक्र भी और हम्द भी तेरी है। अब इंसान क्या चाहता है कि मैं झुक जाऊं उसके आगे, जिसने मेरे ऊपर इतने एहसानात किए, हर किस्म की तारीफ जिसके लिए, मैं उसके आगे झुक जाऊं, उसका शुक्रिया अदा करूं, उसकी तारीफ करूं, यही इबादत है बस। तो कुरान शुरू हो रहा है हम्द से, पूरी जिंदगी इंसान का एक ही काम है, उस रब की हम्द बयान करना, हम्द के तराने पढ़ते रहना। और फिर अल्लाह ताला अपना तारुफ करवाता है, क्योंकि वैसे तो हम अल्लाह ताला को ऐसे समझ नहीं सकते, लेकिन जो हमारी छोटी सी अकल के अंदर जितनी बात आ सकती है, वो क्या है कि वो रब है। सबसे पहली बात जो अल्लाह ताला ने अपने तारुफ में करवाई कि अल्लाह कौन है, वो तुम्हारा रब है, तुम्हारा ही नहीं जहानों का रब है, जहानों का। और रब मैंने बताया था, इसके अंदर पालना भी है, मिल्कियत भी है, नेमतें देना भी है, कायम रखना भी है, इसके अंदर मास्टर होना, मालिक होना भी है, मुरब्बी होना भी है, यानी सारी जो माने हैं वो एक रब में है, खालिक होना भी है। ये है वो रिश्ता जो बंदे का उसके रब के साथ है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना रिश्ता बंदे के साथ बता दिया कि मेरा और तेरा क्या रिश्ता है, और जब इंसान को रब की समझ आ जाए ना, तो इंसान के दिल के अंदर मोहब्बत के जज्बात पैदा होते, जाहिर है पालने वाले से मोहब्बत हो जाती है। एक माँ बच्चे को पालती है ना, जब वो बच्चे को पालती तो बच्चे के दिल में कितनी मोहब्बत होती है माँ के लिए, कि वो हर चीज़ के लिए माँ की तरफ भागता है, वो उसकी कुल दुनिया उसकी माँ होती है। कि माँ जरा सी आंखों से ओझल हो जाए, आपने देखा बच्चे किस तरह रो रो के हलकान हो जाते, वो पालने वाली है। अब जब हाँ बच्चे वो उस उम्र से गुजर जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब जिस दौरान वो बच्चे को पाल रही होती है, आप खुद बताइए कैसी मोहब्बत होती है एक बच्चे के दिल में माँ के लिए। तो रब तो वो है, अल्लाह ताला तो वो रब है कि जो पालता है जब से इंसान पैदा होता है वो उसको पालता है, उसकी हर जरूरत पूरी करना इस पालने में, उसको रोजी देना, उसकी हिफाजत करना, उसको बढ़ाना, उसको पालने में जितनी चीजें आ सकती हैं उसकी निगहदाश्त करना, उसकी हर हर चीज का ख्याल रखना, ये सब पालने में आ जाता है। वो चीजें भी जो हमें पता ही नहीं है। बच्चे को माँ पाल रही होती है ना, बच्चे को तो नहीं पता मेरी क्या क्या जरूरियात है। माँ को पता है, उसको पता है कि इसको ठंड से भी हिफाजत करनी है, अच्छा वो जर्म्स लगने से हिफाजत करनी है, अच्छा इसका बिस्तर गीला हो गया है इसके लिए कंफर्ट का इंतजाम करना है, अच्छा अब इसको दूध का टाइम हो गया है, अब इसकी गिजा का टाइम हो गया है। माँ ये सब चीजों का ध्यान रखती, बच्चे को चाहे पता हो ना हो, हमें तो अपनी बहुत थोड़ी सी जरूरियात का पता है। बेशुमार ऐसी चीजें जो हमारी जरूरत हैं, हमें उनका अंदाजा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, और हमने कभी सोचा भी नहीं उनके बारे में। ये भी मेरी जरूरत है, क्योंकि हमेशा से अल्लाह ताला ने हमें वो दी ही नहीं। तो वो तुम्हारा पालनहार, इसीलिए कहते हैं तुम्हारा मालिक भी है, तुम्हारा पालने वाला भी, तुम्हें नेमते भी देता है, तुम्हें सस्टेन भी करता है, कायम रहे है तुम्हारी साथ, तो सिर्फ उसकी वजह से। वो रब है आलमीन का, देखिए रब्बल मोमिनीन नहीं कहा, रब्बल मोहसिनीन नहीं कहा, जो बड़े अच्छे, रब्बल मुत्तकीन नहीं कहा, मुत्तकी लोगों का रब, मोमिन लोगों का रब, मुसलमानों का, मुस्लिमीन का रब नहीं कहा, हर एक का रब। वो काफिर है, चाहे मुशरिक है, चाहे एथीस्ट है, चाहे कोई नाफरमान है, शैतान है, जिन है, कोई भी है, उसको भी पालता है वो, चाहे उसको मानता है नहीं मानता, वो उसको भी पालता है। सारा दिन एक शख्स उस अल्लाह का इनकार करता रहता है, वो फिर भी खाने के लिए बैठता है वो बंदा, तो वो रब उसको खिलाता है, उसको खाना हजम होता है, और उसके खाना उसके लिए एनर्जी बनता है। सारा दिन एक इंसान उस रब को कहता है कि मैं समझता हूं कि कोई है ही नहीं, कोई कायनात का बनाने वाला ही नहीं, कोई मालिक नहीं, फिर भी जब वो बिस्तर पर लेटता है तो वो रब उसके लिए नींद भेज देता है कि है मेरे बंदे तू सो जा, तेरी जरूरत है नींद, सो जा। सारा दिन इस अपनी जुबान से ये बंदा उस रब के लिए गिले, शिकवे, शिकायतें करता है और कहता है कोई खुदा नहीं है, और वो रब फिर भी इसकी जुबान को चलने देता है। अल्लाह अकबर, क्यों? इसलिए कि वो अर रहमान है, रहम फरमाने वाला है, मेहरबान है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने अपना पहला तारुफ करवाया रब्बुल आलमीन से। अब रब्बुल आलमीन कौन है? अगर हम ये देखें कि फिरौन के सामने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो रब्बुल आलमीन है, तो फिरौन ने कहा था कौन रब्बुल आलमीन? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया था ना, वही जवाब आप लिख लें, रब समावाति वल अर्दी वमा बैना। कि जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो उनके दरमियान है, यानी हर चीज का आलमीन में तमाम चीजें आ गई, हर चीज कोई पालने वाला, हर चीज का एक खालिक, हर चीज कोई बढ़ोतरी देने वाला। और वो देखें पालना, एक पालना होता है कि मसलन किसी ने पाला, किसी ने एक बकरे को भी पाला और उसके बाद फिर उसको जिबा कर दी, या कोई पालता है किसी यतीम को पालता लेकिन उसके ऊपर जुल्म कर रहा, लेकिन वो पालने वाला जानते कैसा है? ऐसा नहीं है, वो कहे अर रहमान, और रहमान है, रहमान जो लफ्ज है, देखिए अरबी के अंदर ना अल्फाज के वजन होते हैं, यानी जैसे आप उर्दू में कहें कि जिस लफ्ज के जो लफ्ज ऐसे होगा जिसके एंड में या अलिफ और नून मद्दा होगा, नून गुन्ना होगा, वो प्लूरल होगा, जमा होगा, तो आप कहते हैं जैसे लड़कियां, इसके वजन पे जो होंगे तो गाड़ियां, कोई और लफ्ज आ गए सारे जितने बना लें इससे, तो वो सारे फिर प्लूरल के उसके अंदर माना होगा और मोनस का माना होगा, कुर्सियां, गाड़ियां, लड़कियां। तो आपने एक वजन रख लिया और उसके ऊपर जितने भी अल्फाज उसके ऊपर राइमिंग कह लें या उस वजन के कह लें, वो आप कहते हैं कि ये सारे अल्फाज जमा मोनस है। इसी तरह जब हम कहते हैं रहमान, तो ये फालान के वजन पे जितने अल्फाज होंगे ना ऐसे जो फालान के वजन पे होंगे, यानी इससे राइमिंग होंगे, रहमान, अतशान, और भी अल्फाज आप देख सकते हैं, उनके अंदर एक माना पाया जाएगा और वो होगा कसरत का, बहुत शिद्दत का। ठीक है, ये इस वर्ड के अंदर ही मौजूद है, यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अब गदबान बहुत ज्यादा गजबनाक, अतियान बहुत ज्यादा प्यासा। ठीक है, तो जोश भी है, शिद्दत भी है, कसरत भी है बहुत ज्यादा इसके अंदर। क्या तो हमें कहने की जरूरत नहीं कि बहुत मेहरबान, तो हम तर्जुमे में लिखते हैं ना, लेकिन अरहमान कह दिया तो अरबी के अंदर इस लफ्ज के अंदर ही ये माना है कि वो बहुत ज्यादा का। ठीक है, जो भी इस वजन पे आएंगे उसमें बहुत ज्यादा का माना होगा। अब जब कहा गया अर रहमान बहुत ज्यादा मेहरबान और अर रहीम, अब रहीम जो है वो फाइल के वजन पे, फाइल के वजन के ऊपर जो भी लफ्ज आएगा उसके अंदर दवाम होगा हमेश की और इस्तेकरार होगा, यानी वो कंटिन्यूटी होगी, कंटिन्यूसली वो ऐसे होगा। तो इसीलिए जब हमने माना लिखा है तो क्या लिखा है, बार बार रहम करने वाले। यानी आप ये देखें, दोनों में रहम का ही मादा है, यानी रूट इनका रहम ही है, लेकिन दोनों के मानों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है उनके वजन की वजह से। दोनों में रहम है लेकिन एक है बहुत ज्यादा शिद्दत है उसके अंदर, कसरत है, एक है बार बार। देखिए थोड़ा सा फर्क है। अब ये नहीं हम कह सकते कि दोनों एक ही हैं, इनके अंदर कोई फर्क ही नहीं है। अगर इनके अंदर कोई फर्क ही नहीं होता तो फिर ये भी कहा जा सकता अर्रहमान अर्रहमान दो दफा कह दिया जाता, लेकिन दूसरा लफ्ज लाया गया तो कोई तो फर्क होगा। अब रहमान में क्या है, जब हम कहते हैं कसरत है, अब ऐसे ही देखें जैसे एक इंसान है वो बहुत ज्यादा सखी है, बहुत सखी, बहुत देने वाला, उसका दिल बड़ा ही खुला है, आप कहते हैं इसका दिल बहुत खुला है, लेकिन अब वो देता कब है ये उसकी मर्जी है। ऐसे भी हो सकता है वो किसी को ज्यादा दे किसी को कम दे, ऐसे भी हो सकता है कि वो देता ही चला जाए। देखिए दोनों में फर्क हुआ ना, एक चीज है कि उसकी एक खूबी है कि वो बहुत सखी है, और एक है आप कहते हैं वो देने वाला है बहुत। अब देने वाले के अंदर हो सकता है कि वो किसी को ज्यादा दे किसी को कम दे, हो सकता है किसी को किसी वक्त दे किसी वक्त नहीं दे, इस तरह से हो सकता है ना। इसी तरह अर्रहमान और अर्रहीम, अर्रहमान जो है अल्लाह ताला की सिफत है जो उसके साथ मुस्तकिल तौर पे है, मुस्तकिल उसके साथ ये सिफत है, यानी हमेशा उसके साथ उसकी जात के साथ ये सिफत रहे, इसी वजह से हम किसी का नाम रहमान नहीं रख सकते, याद रखें। बाकी नाम आप रख सकते हैं रहीम साहब, जैसे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान करीम में फरमाया कि आप रऊफ और रहीम हैं, तो रहीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आ गया, इंसान के लिए भी आया। लेकिन रहमान जो है ना, ये इंसान अब्दुल रहमान हो सकता है, सिर्फ रहमान नहीं हो सकता। और बाज़ उलमा कहते हैं कि जैसे अल्लाह ताला का इस्म आलम है, उसका जाती नाम है अल्लाह, इसी तरह रहमान भी अल्लाह ताला का जाती नाम है, उसमें सिफत भी है लेकिन ये उसका जाती नाम है, इसलिए कोई अपना नाम सिर्फ रहमान ना रखे, अब्दुर रहमान रखे। तो जब हम कहते हैं रहमान तो ये उसका वस्फे लाजिम है, यानी अल्लाह ताला के साथ हमेशा कायम रहने वाली चीज। और जब हम रहीम कहें तो वो वस्फे फेली है उसका, यानी उसका फेल है, उसका इख्तियार है, उसके पास उसकी चॉइस है, जिसके चाहे जब चाहे रहम करे, किसी पे ज्यादा करे, किसी पे कम करे, ठीक है। जैसे कितना बड़ा अल्लाह ताला का रहम है काफिर के ऊपर कि अल्लाह ताला उसको मोहलत दिए हुए, वरना वो कुफर करे, वो इनकार करता है, वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है, वो अल्लाह ताला के बारे में नाजेबा बातें करता है, शिर्क करता है उसके साथ, जो उसको गाली देना के बराबर है, और फिर भी अल्लाह ताला उसको छोड़े हुए, इसलिए कि अल्लाह ताला का रहम है। तो उलमा ने ये फरमाया कि ये फ़र्क है रहमान और रहीम में, कि एक अल्लाह ताला का वस्फ़े लाजिम है, दूसरा वस्फ़े फ़ेली है। रहमान में जो रहमत है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम है हमेशा के लिए, और रहीम में जो है वो रहमत फ़ेली है, यानी जब चाहे अल्लाह ताला रहम करें। और बाज़ दफ़ा कोई काम रहम नज़र नहीं आता उसके अंदर, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला की रहमत होती, उसमें भी उसकी तरफ से रहम होता है। जैसे एक बंदा बीमार हो जाता है, अब वो बीमारी जो उसकी है उससे हो सकता है किसी और बीमारी का पता चल गया हो, उसने सोचा मेरे सर में पेट में दर्द है, अब हो सकता है कोई और बीमारी थी जो छुपी हुई थी, वो पता ना चलती अगर ये ना होता। इसी तरह बीमारी को वो सब समझता है कि हाय मेरे लिए मुश्किल, हालांकि उसी से उसके दर्जे बुलंद हो रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उसके लिए एक जन्नत में घर रखा हुआ है, जो कि अगर जब तक ये बंदा बहुत ज्यादा नेकियां ना करे उस वक्त तक मिल ही नहीं सकता, लेकिन उससे इतनी होती नहीं है तो अल्लाह ताला उसको बीमार कर देता है, और ताकि उसको अल्लाह ताला वो ऊंचे मकाम दे। तो ये अल्लाह ताला का रहम है। इसी तरह किसी को आदमी को आजमाइशें घेरे रखती हैं, हदीस में आता है इतनी आजमाइशें उसके ऊपर होती हैं हत्ता कि वो जमीन के ऊपर चलता है और उसके हाल ये होता है कि उसके ऊपर एक भी गुना बाकी नहीं रह गया होता। तो बजाहिर वो आजमाइशों के अंदर अजियत में है, मुश्किल में है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में ही पाक साफ कर दी। और अल्लाह ताला फरमाता है रहमती वसेअत कुल्ला शेई, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, अल्लाह ताला की रहमत ही है जो ये कायनात चल रही है, ये जमीन चल रही है, आप देख लें इस जमीन पे कितने गुनाह हो रहे हैं। कभी कभी तो हम इंसान होते हुए, हालांकि हमारे अंदर तो कोई इतना रहम नहीं है, लेकिन हम इंसान होते हुए भी और अपने जैसे इंसानों को देखते हैं, हालांकि हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं अब तो इसकी रस्सी बहुत ही दराज हो गई है, और अब इसका तो तब तो इसको अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए, और इसके ऊपर अजाब क्यों नहीं आ जाता, हालांकि वो हमारे जैसा ही इंसान होता है, और हम खुद अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानों से गुनाह होते हैं और हमसे भी होते हैं, फिर भी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेसब्री हो जाते हैं, क्यों नहीं आ रही इसके ऊपर कोई भला, क्यों नहीं उतरती, क्यों इसको छुट्टी मिली। लेकिन अल्लाह ताला अर्रहमान है, उस अपनी रहमत की वजह से वो छोड़े रखता है इंसान को, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम की सबसे उम्मीद अफजा आयत है वो क्या है, ला तकनातु मिन रहमतिल्लाह, ऐ वो लोगों जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, इन्नहु वल गफूर रहीम, वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो बात ये कि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि उसकी रहमत से कभी बंदा मायूस ना, इंसान के पास गुनाह कितने भी हो जाए, हत्ता के उसके गुनाह इतने हो जाए कि आसमानों की बुलंदियों को छूने लगे, सारी जमीन भर जाए उसके गुनाहों से, तब भी अल्लाह की रहमत बड़ी है उसके गुनाहों से। अल्लाह ताला ने जब जमीन व आसमान को पैदा फरमाया, अभी पैदा भी नहीं बल्कि फरमाया था, हदीस में आता है कि अभी कायनात को पैदा भी नहीं किया था, तो अल्लाह ताला ने एक तख्ती लिखवाई जिस पे लिखा हुआ था मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर हावी है, गालिब है, और ये अर्श पे लगी भी है। कि बनाने से पहले ही, कि अल्लाह ताला का गुस्सा जो आएगा ना उससे पहले उसकी रहमत है। अल्लाहु अकबर। और ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में जा सकेगा, वरना जन्नत में भी नहीं जा सकता। हत्ता कि असहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह क्या आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं जन्नत में जा सकते? आपने फरमाया हाँ मैं भी नहीं जा सकता जब तक अल्लाह ताला की रहमत ना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कितना कामिल था, वैसा अमल भी हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, फिर भी आपको अल्लाह ताला की रहमत की जरूरत है। क्यों? इस वजह से कि इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि वो इन नेमतों का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता, सारी जिंदगी इबादत करता रहे तो कहाँ वो जन्नत को खरीद सके। इसलिए अल्लाह ताला की रहमत हर एक इंसान को चाहिए। कतब आला नफ्सी रहमा, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लिख दिया है, फर्ज कर लिया, लाजिम कर दिया। तो इंसान अल्लाह ताला पे कोई चीज लाजिम नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने अपने आप के ऊपर खुद इसको लाजिम किया है। और रहमती वसेअत कुल्ला शय, मेरी रहमत हर चीज के ऊपर गालिब है, अहाता किए हुए वसी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा, और इस एक हिस्से की वजह से कोई भी जो भी जानदार दूसरे के ऊपर रहम करता है, मसलन एक जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाता है, या एक कोई भी इंसान किसी के ऊपर रहम करता है, माँ बच्चे के ऊपर रहम करती है, वो उस एक हिस्से में से है जो उसको मिला हुआ है, जो अल्लाह ताला ने एक हिस्सा जमीन के ऊपर उतारा है, सिर्फ एक हिस्सा। अल्लाह हु अकबर। और उसका कितना हिस्सा किसी को मिला होगा सोचे, और उस हिस्से का ये रिजल्ट है कि कोई भी किसी के साथ रहम का मामला करता है, वरना कोई किसी के साथ कभी भी शफकत रहमत का मामला ना करे। वैसे रहम का मतलब क्या होता है? बाय द वे, मैंने एक क्लास में पूछा कि स्टूडेंट से कि रहम क्या होता है, तो किसी को सही से जवाब नहीं देना आया, क्योंकि हम बोलते तो देते रहम, और हमारे जहन में क्या होता है कि रहम क्या है, कि जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो वो कहे मेरे ऊपर रहम करो रहम करो, तो उसके साथ नरमी कर दी जाए, उसको सजा ना दी जाए, ये रहम। हालांकि ये रहम का पूरा माना नहीं है, ठीक है, वो भी एक रहम का मतलब उसमें रहम है कि वो उसको छोड़ देता है, लेकिन रहम के लफ्ज़ में ना दो माने हैं। नंबर 1, इतनी शदीद मोहब्बत जो गैर मशरूत हो, यानी उसके अंदर कोई शर्त ना हो कि ये करेगा तो फिर मैं ये इसके साथ मोहब्बत करूंगी, या ये मेरी फलां काम करेगा मेरा कहना मानेगा तो फिर मैं करूं, नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं मोहब्बत के जवाब में, इतनी शदीद मोहब्बत, अनकंडीशनल बेलॉस जिसको कहेंगे, गैर मशरूत मोहब्बत, शर्तें हैं ही नहीं कोई। नंबर 2, नंबर 2 है कि मुकम्मल तौर पर किसी को किसी का ख्याल करना, मुकम्मल तौर पे, और रहमान और अर्रहीम ये किससे निकले हैं? रहा मीम से, रहम, रहमे मादर कहते हैं ना यूट्रस को, उसके अंदर बच्चे को माँ रखे होती है और हर तरह की उसकी जरूरत माँ के थ्रू पूरी हो रही होती है। माँ उसका कैसे ख्याल कर रही होती है कि अच्छा ये ना खाऊं, ऐसे ना चलूं, यहाँ ना बैठूं, इतनी देर खड़ी ना रहूं, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, कितनी मोहब्बत होती है। तो रहम जो है ये रूट है रहमान और रहीम, इन दो अल्फाज का। और इसी से आप सोच लें कि जब आप कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्रहमान है, तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और बहुत ज्यादा ख्याल करने वाला। तो वो पालने वाला कैसा है? ऐसा नहीं कि पाल रहा है लेकिन साथ, जैसे दुनिया में है कई ऐसे रिश्ते होते हैं, पाल तो लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो ऐसा सलूक भी साथ करते हैं जो बहुत ही जुल्म वाला होता है। लेकिन अल्लाह ताला वो रब है, वो पालने वाला है, जो रहमान भी है और रहीम भी है। और सोच लेना, आप खुद सोचें कि जितना कुछ हमें मिला हुआ है, जितना कुछ और जितने कुछ आप पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं इस कायनात में, वो सब उसकी रहमत की वजह से। और हमें जितना कुछ मिला हुआ है, अब हमें कितना कुछ मिला हुआ है, हम दुनिया में किस तरह आए थे? नंगे पैर नंगे बदन, कुछ भी नहीं था हमारे पास। और आज कितना कुछ है, इसके बावजूद अगर एक चीज भी हमसे छिन जाती है तो हम गिले, शिकवे, शिकायतें, नाराजगियां और इस कदर ज्यादा हम इसके ऊपर अल्लाह ताला से, यानी एक अपने दिल के अंदर मैल सा ले आते हैं, अपने दिल के अंदर एक बुख सा भर जाता है कि अस्तग़फिरुल्लाह के अल्लाह ताला ने मेरे से ये चीज़ क्यों छीन ली और क्यों चली गई, और फिर क्या जरूरत थी मुझे देने की अगर वापस ही लेनी थी तो, और ऐसी बातें करते। हालांकि अगर उसने आपको, चले अनगिनत नेमतों को तो हम काउंटलेस नेमतों को तो चलो काउंट ही नहीं कर सकते ना, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला तुहसुहा, तुम तो काउंट ही नहीं कर सकते इतनी नेमतें। तो ठीक है, हम एक मसलन चलो काउंटलेस छोड़ दें, आप 100 आपको नेमते मसलन मिली, वैसे तो काउंटलेस मिली में, लेकिन चलो लेट से 100 मिली, उनमें से एक नेमत अल्लाह ताला लेता है, 99 दी होती, फिर भी हमारे मुंह से एक नेमत भी चली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल कभी नहीं निकलता। कभी नहीं हम कहते अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र, अनगिनत नेमते तूने जो मुझे और दी नहीं, वो 99 नजर नहीं आती हमें। अल्लाह अकबर। तो रहमान और रहीम, अब आप जितने आसार रहमत के अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आप रोज देखते हैं अल्लाह ताला की रहमत के जो इफेक्ट्स हैं ना, अपने इर्द गिर्द रोज देखते हैं, क्योंकि हर चीज का अहाता किया हुआ है अल्लाह ताला की रहमत ने, दुनिया में भी। फिर हमारे अगर मुंह से कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना निकले या कभी शुक्र के अल्फाज ना निकले, तो इसका मतलब है हमारी कोताह नजरी है, हमें नजर नहीं आता अल्लाह ताला से नजर मांगे पे। और ये रहमत आम है, मैंने आपको जैसे बताया, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला रहमान है, सबके लिए रहमान है, सबको पालने वाला है। अल्लाह अकबर, उसकी ये रहमत आम है। तो ये अर्रहमान उसका होना, जिसकी रहमत सारे आलम, सारी कायनात और जो कुछ पैदा आज तक हो चुका और जो कुछ होगा, सब पर हावी है और सबको शामिल किए हुए है, हर नेको बद के लिए शफकत, रिज्क, मुसीबतों को दूर करना, सबके लिए। और अर्रहीम में भी जब हम अर्रहीम की तरफ देखते हैं, तो फिर आप देखें कि अल्लाह ताला मोमिनों को कयामत के दिन अर्रहीम होगा उनके साथ, क्योंकि अल्लाह ताला उन अपनी रहमत से उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उस दिन मैंने आपको जैसे बताया, अर्रहीम उसका फेल है, जिस पे चाहे रहम कर, तो उस दिन वो मोमिनों के ऊपर रहम करेगा, अपनी रहमत नाजिल करेगा, और ये इसी वजह से जन्नत में दाखिल होंगे। और आज दुनिया में तो सब उसकी रहमत का मजा उठा रहे हैं, कयामत के दिन काफरों को उसकी रहमत में से हिस्सा नहीं मिलेगा, इसी वजह से वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेंगे। दुनिया में भी जो हमें नेमतें मिलती हैं ना, जो भी खैर हमें मिलती है, वो उसकी रहमत की वजह से, और जो भी गम परेशानी तकलीफ हमसे दूर होती है वो भी उसकी रहमत की वजह से। अल्लाह अकबर। बाज दफा गैर मुस्लिम लोग कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह, तुम्हारा खुदा तो बड़ा कहर वाला है और गजब वाला है। हालांकि कुरान खोल के ही देखें, खुदा के लिए कभी हम समझ के खुद भी कुरान पढ़ें और फिर लोगों तक भी पहुंचाएं कि देखो पहला रिश्ता ही उसका मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या है, वो रब है, वो रब है। और फिर दूसरा वो अर्रहमान है, अर्रहमान। अब ऐसे में ये कहना कि नहीं वो तो तुम्हारा रब, तो हमारा तो बहुत मोहब्बत करने वाला है, तुम्हारा तो बहुत बहुत कहर वाला है, और ऐसे है जिसको राजी करना ही बड़ा मुश्किल हो, यानी ऐसे लगता है जैसे आम इंसानों के बस की बात ही नहीं है, वो तो इतना गुस्से वाला है। ऐसा नहीं है, वो तो इतना मेहरबान है, और उसकी रहमतें और मेहरबानी किसी खास खानदान के लिए नहीं है कि कोई सैयद खानदान से ही होगा तो उसके लिए, किसी खास नस्ल से नहीं कि कोई गोरा सफेद होगा उसके लिए, किसी खास कौम के लिए नहीं कि कोई अरबी होगा तो उसके लिए, सारी दुनिया के लिए। अल्लाह अकबर। लिहाजा जो ये इस गलत फहमी में है या गुमराही में है और ऐसी बातें करते हैं कि वो तो ऐसा सख्त है और तुम्हारा रब तो ऐसा है और बड़ा सजा दे, तो उनको बताएं कि देखो हमारे कुरान में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ सबसे पहला क्या कराया, रब्बुल आलमीन, दूसरा क्या कराया, अर्रहमान, तीसरा क्या कराया, अर्रहीम, और चौथा मालिक यौमिद्दीन। ये अल्लाह ताला ने अपने अपने बारे में बताया है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो अल्लाह कौन है, तो वो है जिसकी ये खूबियां। वो तो शैतान पे भी मेहरबान हो गया कि जब शैतान ने भी इबलीस ने भी अल्लाह ताला से मांगा कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी। तो जब हम नमाज में भी खड़े हो तो ये सोचें कि हम किसके आगे खड़े हैं, जो अर्रहमान है और जो अर्रहीम है। इससे इंसान के दिल के अंदर क्या पैदा होता है, उम्मीद, उम्मीद पैदा होती। पहले रब्बुल आलमीन से क्या पैदा हुआ, मोहब्बत, और अर्रहमान से क्या पैदा हुआ, जब आपको पता चल गया कि उसने अपनी रहमत के 100 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा सिर्फ सारी दुनिया सारी मखलूक के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसके असरात आज हम देख रहे हैं। कोई भी माँ बाप भी बच्चे को जो पालते पोसते वो उस रहमत की वजह से कर रहे हैं, तो उसके पास जो 99 हिस्से उसके पास है, सोचें कि वो कितना मेहरबान होगा। फिर इसके बावजूद मुझे अफसोस होता है बाज दफा जब लोग ऐसी बातें करते हैं, ओ वहां पे अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं, फलानी जगह पे बारिश नहीं हुई, फलां को अल्लाह ताला ने अंधा क्यों बना दिया, फलां के ऊपर ऐसा, वो क्या समझते हैं कि वो अल्लाह ताला से ज्यादा रहम करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला से ज्यादा मेहरबान है। वो तुम्हें तो एक रहमत के एक हिस्से का भी पता नहीं कौन सा जर्रा मिला होगा, जिसकी वजह से तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े और तुम्हें बहुत बड़ा दर्द आने लगा इन लोगों के लिए। वो रब जिसके पास 99 रहमतें हैं, वो अपने बंदों के साथ कितनी रहमत का मामला फरमाने वाला होगा। उसकी रहमत की वुसअत का अंदाजा आप इससे कर ले कि दुनिया भर के बड़े बड़े कातिल मुजरिम मुशरिक, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है, एक दरवाजा खुला रखा है कि तुम आना चाहो तो तौबा करके मेरी रहमत की छांव में आ जाओ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लो, उसके साथ अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। नाफरमानियां छोड़ के इतात गुजारी कर लो, वो माफ कर देगा सारे। वो गाफिर जंब है, काबिल तौब है, गुनाहों को माफ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला। नदी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को बता दीजिए बेशक मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूं। वो खुद फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। और फिर फइन कज़्ज़बू का फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, ए नबी अगर ये आपको झुठलाते हैं ना काफिर, तो आप कह दें कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है, काफरों को भी ये बता दे। अल्लाह ताला से ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं हो सकता। एक माँ अपने बच्चे पे कितनी की शफकत कर लेगी, कितनी की रहम कर लेगी, कितनी की मोहब्बत कर लेगी, खुद बताई। जब हम कहते हैं ना 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है, 70 भी कम है, कम है ये, इसलिए क्योंकि 70 का लफ्ज कहीं बताया नहीं गया वैसे, लेकिन वो हमारी आम मुहावरे में हम बोलते। आप अंदाजा कीजिए, वो उस माँ को तो उस एक हिस्से का भी एक जर्रा मिला हुआ है जिसकी वजह से वो मोहब्बत कर रही है अपने बच्चे से। अल्लाह ताला के पास 99 रहमतें हैं, और कयामत के दिन ये जो एक रहमत का हिस्सा है ना जो उसने मखलूक के अंदर तकसीम किया, वो भी अल्लाह ताला के पास चला जाएगा, और वो अपनी 100 रहमतों के साथ, 100 रहमतों के साथ वो बंदे के साथ मामला फरमाएगा। तो अब आप अंदाजा कीजिए, हमें तो दुनिया के अंदर एक माँ की ममता में ही रहमत नजर आती है सबसे ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैदी पेश किए गए, तो एक कैदी औरत अपने बच्चे को तलाश करी जिसका बच्चा गुम गया था। जब बच्चा मिला तो वो मोहब्बत से उसको सीने से लगा लिया, दूध पिलाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम क्या समझती है ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती? उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं फेंक सकती, कभी भी नहीं फेंक सकती। आपने फरमाया, अल्लाह ताला इस माँ से भी कहीं ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला, उनके साथ रहम फरमाने वाला, यानी वो इतना रहम करने वाला है माँ बाप से भी ज्यादा, वो कभी ये नहीं चाहता कि बंदों को आग में डाले। उसके कोई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उसको कोई शौक नहीं है कि मैं इनको आग में डालूं। अल्लाह अकबर। जब इंसान खुद देखे कि कोई दुश्मन अगर उसके पीछे हो तो वो दौड़ पड़े, और दौड़ता दौड़ता जाके किसी के दरवाजे के ऊपर अपने आप को डाल दे, और उसके सामने रोते हुए अपने रुखसार उसकी चौखट की खाक में रगड़ता रहे, तो वो बंदा भी तरस खा लेता है। ये उसकी छोटी सी रहम की छोटी सी जो उसको हिस्सा मिला ना उसमें। और कहां ये कि अगर एक बंदा अल्लाह ताला के आगे अपने आप को डाल दे और रोने लग जाए और अपनी बेचारगी का इजहार करे, ऐ रब इस बंदे पे रहम कर दे जिस पे तेरे सिवा कोई रहम करने वाला नहीं, क्योंकि तेरे सिवा तो कोई तेरे से बढ़ के कोई रहम करने वाला है ही नहीं, कोई इस कायनात में रहमान नहीं है, कोई भी नहीं। अब्दुल रहमान हो सकता, कोई रहमान नहीं, तेरे से बढ़ के तो कोई रहम करने वाला है ही नहीं, तेरे जैसा भी कोई रहम करने वाला, इक्वल भी उसके कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की जात में जैसे कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं कि कोई इक्वल हो अल्लाह ताला के उसकी सिफात में। तो तेरे जैसा तो कोई मददगार है ही नहीं, कोई मोहब्बत करने वाला है ही नहीं, कोई केयर करने वाला है ही नहीं, कोई रहम करने वाला है ही नहीं। तू नहीं मुझे ठिकाना देगा तो और कौन देगा? तेरे सिवा मेरा कोई फरियाद रस नहीं, मैं तेरे आगे ना बिछू और झुकू तो और कहाँ जाऊं? तू नहीं मुझे कबूल करेगा तो कौन करेगा? तो मैं तो तेरा मोहताज हूं, मैं तो तुझसे ही सवाल कर सकता हूं, और तुझी से मेरी उम्मीद है। तो आप सोचे कि जो ऐसा कह दे कि कोई और जाए पनाह नहीं, अल्लाह पनाह तो तेरे पास ही है। तू अब चाहे धुतकारे और चाहे मुझे कबूल कर ले, मैंने तो तेरे दर से नहीं जाना, क्योंकि मेरा तेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो क्या अल्लाह ताला ना उसको माफ करेगा? क्या अल्लाह ताला ना उसके ऊपर रहम करेगा? अल्लाह हू अकबर। तो इंसान सोचे कि वो अरहमुर्राहिमीन है, अरहमुर्राहिमीन। जब एक जगह आता है कि ये मुस्तदरक की हदीस है कि जब बेशक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को अरहमुर्राहिमीन कहने वालों के लिए बेकरार कर दिया, जो भी शख्स 3 दफा अरहमुर्राहिमीन कहता है, फरिश्ता उसे खुशखबरी देता है और कहता है तूने सबसे ज्यादा रहम करने वाले को पुकारा है, वो तेरी तरफ मुतवज्जे हो गया, अब मांग जो मांगता है। उनको पता है ना हजरत जैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे थे, जिस वक्त दुश्मन ने उनको पकड़ लिया और रस्सियों से कस दिया, और फिर अब वो उनकी तरफ बढ़ा उनको कत्ल करने के लिए, तो उनके मुंह से क्या निकला? या अरहमुर्राहिमीन। तो अब वो आदमी आगे बढ़ा है तो एक आवाज आती है, इसको कत्ल मत करो। वो इधर उधर देखता है कोई नहीं, फिर आगे बढ़ता है, वो फिर कहते हैं या अरहमुर्राहिमीन। वो फिर सुनता है एक आवाज, कोई कहता है इसको मत कत्ल करो। फिर तीसरी दफा जब वो आगे बढ़ता है तो एक सवार आता है जो आके उसके ऊपर हमला करता है और उसको खत्म कर देता है। तो जैद पूछते हैं कि अल्लाह के बंदे तू कौन है, कौन है और ये कहाँ से आवाज आ रही थी, क्योंकि कोई दिख तो रहा नहीं था, इसको कत्ल मत करो, इसको कत्ल मत करो, तो तू कौन है? तो फरमाया मैं एक फरिश्ता हूं, जब तूने पहली दफा कहा या अरहमुर्राहिमीन तो मैं 7वें आसमान के ऊपर था और अल्लाह ताला से मैंने इजाजत चाही कि मैं जाऊं तेरी मदद करने के। जब तूने दूसरी दफा कहा या अरहमुर्राहिमीन तो मैं पहले आसमान पे था और तीसरी दफा यहां पे मौजूद था। अब इंसान कहता है ना सबसे ज्यादा रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, तो अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को कबूल करता है, अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है कि उसने अल्लाह ताला को पुकारा है, इससे ज्यादा कोई रहम करने वाला है ही नहीं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे जो कह रहा था अरहमुर्राहिमीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मांग, बेशक अल्लाह ताला तेरी तरफ मुतवज्जे। अल्लाहु अकबर। अब वो पता है ना ये यूब अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी ना, अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंत अरहमुर्राहिमीन, अल्लाह मुझे तो तकलीफ पहुंच रही है, हाँ तो सब रहम करने वालों में सबसे बढ़ के रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला अर्रहमान भी है और अर्रहीम भी है, और अर्रहमान से रहमत मांगनी चाहिए, उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए, जिसने इस तरह से मांगा तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। इंसान अल्लाह ताला की नस्माए हुस्ना से अल्लाह ताला से दुआएं करें। और यहाँ पर आप देखें कि जब इंसान कहता है कि अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना की। पहले जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा था बंदे ने, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, और आप फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। सना भी हम्द के करीब करीब ही लफ्ज है, और दोबारा बयान करना हम्द तो वो सना होता है। और फिर जब हमने अर्रहमान और अर्रहीम कहा और अल्लाह ताला को उसके प्यारे नामों से पुकारा, तो अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया इसका। इंसान इस चीज को भी सोचा करे कि अल्लाह ताला मुझे जवाब दे रहा है। अल्लाह ताला मेरी इस बोलने के ऊपर अगर हम बिल्कुल हाजिर जहन के साथ सूरह फातिहा को पढ़े तो हम महसूस करें कि अल्लाह ताला मेरी इस बात का जवाब दे रहा है। मैं कह रही हूँ रहमान और रहीम, तो अल्लाह ताला मुझे जवाब देता है। और इसकी आयतों के ऊपर अल्लाह ताला जवाब दिए जा रहा है, तो दोनों में रहम का माना हमने देखा है। और हम अब अल्लाह ताला की रहमत के आसार को दुनिया में देखें, जितनी भी खैर दुनिया में है उसके ऊपर सोचें, ये रहमान की रहमत है। और जितनी चीज़ों से शर दूर हो रहा है, शर से हिफाजत हो रही है, तो ये भी रहमान की रहमत है। आगे मालिक, मालिक और मलिक, ये दोनों किरात हैं और दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आपने बाज़ दफ़ा कारियों को नमाज में मालिकी यौम दी, यानी मालिक खड़ी अलिफ नहीं है, मलिक सिर्फ जबर हो, इसके साथ पढ़ते हुए भी सुना होगा। और दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों तरह से ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और दोनों के माने बहुत खूबसूरत हैं। मालिक मालिक से है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज का मालिक होना, मिल्कियत होना। और मलिक बादशाह को कहते हैं, अब हम नाम भी रख देते हैं मलिक साहब, तो मलिक बादशाह को कहते हैं। और वो बादशाह जो बा इख्तियार हो, जिसके पास इख्तियार भी हो। अब मालिक होना यानी वो मालिक है, इसका मतलब है कि जो चाहे करे, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई चीज़ का मालिक होता है ना। अब आप कहते हैं हम तो इतनी टेम्प्रेरी और फिर भी पूरे मालिक नहीं होते, तब भी हम कहते हैं मैं तो इस घर की मालिक हूं, मैं जो मर्जी करूं। कोई समझता है मैं इस जिस्म की मालिक हूं, मेरी जो मर्जी मैं करूं। तो जो किसी चीज का मालिक होता है वो फिर समझता है कि उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तो हकीकी मालिक है, वो जो चाहे करे उससे कोई सवाल नहीं हो सकता, वो जिससे जैसा चाहे करे कोई भी उससे पूछ नहीं सकता। और मलिक में क्या है, जो बादशाह है। अब बादशाह बा इख्तियार, यानी ऐसा बादशाह नहीं जिसके खुद के हाथ ही बंधे हुए हों, वो नहीं, वो खुद बा इख्तियार है। अरे अब वो जो चाहे फैसला करे। बादशाह के पास भी क्या होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उससे ऊपर कोई होता नहीं है ना। जो बादशाह का ये बड़ा यानी उसके पास पावर होती है, बादशाहत जो है वो पावर की निशानी, हुक्मरानी की निशानी। तो वो मालिक भी है और मलिक भी है, किसका, यौम दीन, दीन यौम दिन, दीन बदले के, बदले के दिन का वो मालिक भी और मलिक भी है। यानी उस दिन का मालिक है, उस दिन जो चाहेगा करेगा, उससे कोई पूछ नहीं सकता। और फिर वो बा इख्तियार है, जो कह देगा वैसा ही होगा, बादशाह है उस दिन का, उसकी अथॉरिटी होगी, उसकी पावर होगी, उसके हाथ में सबको फैसले होंगे। आज इंसान समझता है मैं घर का मालिक, पैसे का मालिक, या हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाए तो मैं इस वजारत का मालिक, वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लगता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये तो अल्लाह ताला ने एक छोटा सा इख्तियार उसको दिया हुआ है, उस जिससे वो घमंड में आ जाता है, समझता है मैं बा इख्तियार हो गया। मेरी अथॉरिटी हो गई, मेरे पास पावर आ गई। हालांकि पावर नहीं है उसको, तो छोटा सा दिया है बिल्कुल, बहुत दफा तो दुनिया में ही छिन जाता है, दुनिया में ही किसी के पास नहीं रहती पावर, या नहीं रहता पैसा, या अपने जिस्म में कमी आ जाती, बीमार हो जाता है, या जिस्म में कोई ऐसी खराबी पैदा हो जाती। अच्छा, अब इंसान समझता है मैं पावर में हूं, अपना जिस्म भी अपना ना रहा तो किस चीज की पावर है। घर छिन जाते हैं, या कभी इंसान को कोई चोर डाकू लूट के ले जाते हैं पैसा उसका। तो इंसान की जो मिल्कियत है ना, वो बहुत टेम्प्रेरी है और पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मिल्कियत सिर्फ अल्लाह ताला की। अब आप मसलन है अपने अपने आप को समझते, चलो और कुछ चीज को नहीं, अपने जिस्म को ही हम समझते, बाकी चीजें फिर भी आउटसाइड आउटसाइड हैं, तो हमें हो सकता है कोई चीज छीन जाए, लेकिन हम अपने जिस्म को तो अपना समझते हैं। अगर हम अपने जिस्म के मालिक हैं ना, तो फिर ये बीमार क्यों होता है? अगर अपने जिस्म के मालिक हैं, तो दिल धड़कना बंद क्यों हो जाता है? गुर्दे क्यों फेल हो जाते हैं? बिनाई क्यों कमजोर होने लगती है? नाखून क्यों बढ़ने लगते हैं? बाल क्यों झड़ने लगते हैं? ऊंचा क्यों सुनाई देने लगता है? आप तो मालिक हैं, तो सब सब चीजें ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि आप नहीं चाहते। और तो और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापा क्यों आने लगता है? कोई भी नहीं बूढ़ा होना चाहता, लेकिन वो बूढ़ा हो जाता है, उसका जिस्म लागर हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो सोच लें, अगर अपने जिस्म के भी मालिक नहीं, तो और कौन सी चीज फिर रह गई जिसके आप मालिक होंगे? तो वो मालिक है यौम दीन का। इंसान किसी चीज का भी मालिक नहीं है, ये सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए एक समझ लें, एक ख्याल दे दिया गया कि चलो तुम इस चीज के, तुम्हारी मिल्कियत में एक छोटी टेम्परेरी एक काम, दुनिया का चलाने के लिए एक मिल्कियत का जिसको कहते एहसास दे दिया गया, ठीक है। वरना असल में कोई भी मालिक नहीं है, और जो मोमिन है वो इस बात को सही समझता है, जो काफिर है वो तो अपने आप को समझता है कि मैं ही हर चीज का मालिक हूँ। जो मोमिन है वो हमेशा ये याद रखता है कि मैं तो किसी चीज का मालिक नहीं, मेरा रब ही है जो मालिक है हर चीज का, और जो कुछ मेरे पास भी है उसका भी मालिक वही है, मैं थोड़ी मालिक हूँ, ठीक है। ये फर्क है काफिर और मोमिन की सोच में। अब यहाँ पे कहा गया वो मालिक है किसका? यौमुद्दीन का। यौम दिन, हम इसका तर्जुमा वैसे दिन करते हैं, लेकिन यौम जो है ना वो टाइम फ्रेम के लिए है यहाँ पे, टाइम फ्रेम। देखिए, क्योंकि जैसे यौम, अब हमारा दिन है 24 आवर्स का, चांद पे चले जाएं किसी और आवर्स का है, मार्स पे चले जाएं कोई और आवर्स का दिन है, कहीं इससे कहीं ज्यादा लंबे दिन है, कहीं इससे छोटे दिन होंगे, तो हर जगह तो 24 आवर का दिन नहीं है, तो उसको आप फिर क्या कहेंगे? वो दिन है लेकिन वो कोई 48 आवर्स का है, फिर क्या कहेंगे? 2 दिन तो नहीं कहते हम, कहते ये भी दिन है। तो दिन ड्यूरेशन है, टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 24 आवर का ही है, किसी और जगह कुछ और होगा। कयामत के दिन, दिन की लेंथ कितनी होगी? ये वो दिन नहीं है जो हमारा 24 आवर का है, क्योंकि ये तो जमीन का दिन है, वो तो कोई और ही दुनिया होगी, वो आखरत है। वहां का जो दिन है वो डिपेंड करता है कितना लंबा है इंसान की ईमान के ऊपर। देखिए, जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसका लिए वो दिन उतना ही शॉर्ट होगा, जितना ईमान कमजोर होगा या काफिर होगा तो उसके लिए उतना ही लंबा होगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए कयामत का दिन असर और मगरिब के दरमियान का, इतना शॉर्ट है। आप दुनिया की मिसाल ले लें, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो क्या हर एक को एक जितना टाइम लगता है बाहर निकलने? नहीं, सब एक ही जगह से आए होते हैं, लेकिन निकलने का टाइम सबका फर्क होता है। जो VVVIPs है वो तो जहाज से उतरते ही चलते ही चले जाते हैं, बाहर कोई उनको पूछने वाला ही नहीं होता, रेड कारपेट बिछा दिए जाते हैं। जो बिजनेस क्लास वाले होते हैं उनके सामान जल्दी आ जाता है, वो लाइन में भी पहले खड़े होते हैं, लिहाजा वो भी जल्दी फारिग हो जाते हैं। अब जो इकोनॉमी वाले हैं उनमें कोई आगे है कोई पीछे है, किसी का जल्दी आया किसी का देर से आया, किसी को उन्होंने बिठा लिया और आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा दिन बिठाए रखा, कोई क्रिमिनल था उसको वहीं पे उन्होंने धर लिया, वहीं अरेस्ट कर लिया। कयामत के दिन भी जो VVIPs होंगे, अगरचे मिसाल तो नहीं हम दे सकते कोई भी उस दिन के साथ, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए, जो VVIPs होंगे ना वो तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, उनके लिए ये दिन बहुत ही हल्का होगा। जो फर्स्ट क्लास वाले, जैसे मैं आपको कहा बिजनेस क्लास वाले हैं, वो भी साबिकून अलव्वलून, थोड़ा सा हिसाब लेके वो भी आगे चले जाएंगे। बाकी जो इकोनॉमी वाले हैं, जो मिली जुली जिंदगी गुजारने वाले हैं, कभी नेकियां कर ली कभी गुनाह कर लिए और फिर कहा ओहो तो कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, फलां तो इससे भी ज्यादा करता है, इनका पता चलेगा कि असल तो ये है कि ये जब आमाला में तुलेंगे तो क्या इनके गुनाह ज्यादा होते हैं या नेकियां। तो जो मोमिन है यानी जिनका ईमान बहुत पाए का था, उनके लिए तो कैलूला के वक्त तक तो वो जन्नत में भी चले जाएंगे। यानी दिन में जो कैलूला का वक्त होता है ना हमारा, सुबह से लेके यानी जोहर के बाद, इतना टाइम के अंदर तो वो जन्नत में जा भी चुके होंगे, अभी तक वो लोग वहीं पे खड़े अपना हिसाब दे रहे होंगे। और कईयों के लिए 50,000 साल के बराबर दिन गुजरेगा, इतना ज्यादा सख्त होगा, इतना ज्यादा सख्त होगा कि वो लोग कहेंगे या अल्लाह हमें इससे तो बेहतर है जहन्नुम में डाल दे, लेकिन ये इंतजार तो खत्म हो। देखिए जो इंतजार की घड़ियां होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होना है, अब मेरे साथ क्या होना, अब आया अब आया, अब मुसीबत अब मुसीबत, अब पता नहीं मेरे साथ होगा क्या। उस तकलीफ से इंसान कहता है, जैसे कोई किसी को तकलीफ होती है वो कहता है कि इसे बेहतर तो होकर मैं मारी जाऊं, ऐसे होता है ना। तो जो उस दिन को काट रहा है ना वो इतनी मुश्किल के अंदर होगा, इतनी बुरे हालों में कहेगा इससे बेहतर तो है कि मैं जहन्नुम में चला जाऊं, क्योंकि ये इंतजार आसान नहीं होगा। इंसान कांप रहा होगा, सांस घुट रहा होगा, तपिश होगी, गर्मी होगी, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, उसको पता नहीं होगा अब मेरा होगा क्या। तो यौम को आप सोच लें कि फिर इंसान अपने लिए क्या चाहता है कि ये दिन मेरे लिए कितना हो। और दीन, जैसे मैंने आपको बताया कि दीन मजहब को भी कहते हैं, मगर फैसले के लिए भी, जजमेंट के लिए भी, बदले के लिए, इसीलिए जजाओ सजा का दिन कहते हैं ना, बदला, जजा मिलेगी या सजा मिलेगी, क्या बदला मिलेगा, जो अमल होगा वैसा ही बदला होगा। तो अल्लाह ताला मालिक भी है उस दिन का और बादशाह भी है उस दिन का, यानी उस दिन नहीं किसी की मिजाल होगी कि वो कुछ बोले, वो कुछ कहे, वो कहे कि मैंने तो फलां को लेकर जाना है अपने साथ, मैं तो नहीं मानता ये, और ये तो मेरे मुरीद हैं और ये इनको तो मैं लेकर ही जाऊंगा, और अल्लाह माफ करे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ऐसे ऐसे शेर बनाए हुए हैं, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसी बातें कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि मालिक यौमिद्दीन कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मालिक उस दिन के, अल्लाह ताला। जो बंदा नमाज में ये कह दे कि मालिक उस दिन का अल्लाह ताला है, और उसके बाद वो ये शेर पढ़े, इससे ही पता चलता है कि हमारी जहालत की इंतहा क्या है। और जब हम ये सोचते हैं फलां का पल्लू पकड़ लूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा, ये मालिक उस दिन का वो ही है जिसको चाहे छोड़ दे, चाहे किसी को कह दे तुम इसकी सिफारिश कर दो, उसने उसने छोड़ना ही है उसको, इसलिए कहता है तुम्हें इज्जत मैं देता हूं, तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश पे मैं छोड़ूंगा। ये नहीं कि कोई खुद ही उठ के खड़ा हो जाए और कहे जी मैं जी सिफारिश करता हूं, आज फलां मेरे मुरीद और फलां मेरे शागिर्द और फलां मेरे इस बंदे को कोई नहीं लेकर जा सकता जहन्नुम में, मैं इसकी सिफारिश करने के लिए खड़ा हो गया हूं या मैं इसको छुड़ा दूंगा। अल्लाह अकबर, अल मुल्कु यौम इदिल्लाह, बादशाह तो उस दिन सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, मुल्क अल्लाह का ही होगा। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, अल्लाह तआला ने फरमाया ना तुम्हें क्या पता कि क्या दिन है वो यौमुद्दीन, क्या चीज है दिन, कोई नफ्स किसी को कोई फायदा नहीं दे सकेगा, कोई किसी के काम ना आ सकेगा, और अल्लाह ताला उस दिन का क्यों कहा गया? क्या यौमुद्दीन का अल्लाह ताला मालिक है, बादशाह है, तो क्या आज के दिनों का क्या कौन बादशाह है? आज के दिनों का भी अल्लाह ताला ही मालिक है, लेकिन क्यों उस दिन का स्पेसिफिकली कहा? क्योंकि वो इट्स अ ग्रैंड डे, ग्रैंड गैदरिंग, इतना बड़ा दिन है वो, उस जैसा दिन ना कभी आया ना कभी आएगा। कैसे? इसलिए कि इंसानियत की तारीख में आप देख ले, कभी ऐसा नहीं हुआ। इंसानियत की क्या छोड़े, इंसानियत की तो कायनात की तारीख में देख ले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर इंसान जो भी पैदा हुआ, हर जिन, हर फरिश्ता, हत्ता के हर जानवर भी सब इकट्ठे हो जाएं एक जगह, कभी जो पैदा हुआ किसी जमाने में भी हुआ, वो सब एक गैदरिंग में हो, एक जगह पे हो, और सब एक अदालत में अल्लाह ताला के हजूर खड़े में हो। कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। वो उस दिन का मालिक है, तो फिर और दिन तो वो छोटे छोटे दिन है ना, उनका तो वो मालिक है ही। यानी एक बड़े दिन का बता के आप वो बता दे, सारे दिनों का ही वो मालिक है, लेकिन वो दिन का वो मालिक है कि उससे बड़ा दिन तो और कोई नहीं है। तो जो बदले का दिन है, बहुत सख्त दिन है, इसको यौम सकीला कहा गया, एक बहुत भारी दिन, वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे, इस कदर सख्त दिन है। अल्लाह अकबर। तो जो उस दिन का मालिक, वो सारे ही दिनों का मालिक है। जो आम आम दिन है उनका तो वो मालिक है ही, वो तो उस दिन का भी मालिक है। जैसे कहें कि कोई कोई बड़ा मुल्क का बादशाह है, तो कहें कि अच्छा क्या वो इस जगह का भी, इस छोटे से प्लॉट का भी बादशाह है? तो आप कहते हैं इसका क्या, वो तो पूरे मुल्क का बादशाह है। तो अल्लाह ताला बाकी दिनों का क्या, वो तो यौमुद्दीन का भी बादशाह है, मालिक है, बाकी दिन की क्या हैसियत है? तो वो दिन जो बदले का दिन है, यानी ऐसा दिन जो बोया वो काटोगे, जो बोओगे आज, कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप बीज डालें, मसलन है कि सेब का, और ऊपर माल्टे निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप चावल का बीज डाले तो गंदम निकल आए, जो डालोगे वो ही काटोगे, बदला उसी का मिलेगा। इसीलिए दुनिया को कहा गया ये आखरत की खेती है, इस खेती में जो बोलोगे वहां जाके पालोगे, कोई सरप्राइजेस थोड़े ही हैं, हर एक को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इंसान अपने नफ्स के ऊपर खुद जानता है, वले इंसानो अला नफ्सी ही बसीरा वलो अल्का मआज़ीरा, इंसान बड़ी अच्छी तरह जानता है वो क्या कर रहा है, चाहे वो कितने बहाने करता रहे। तो हर जमाने, हर दौर का हर इंसान, कयामत तक का आदम अलैहि सलाम से लेकर हर इंसान वहां पे मौजूद होगा, हर जिन मौजूद होगा। अब बताओ उस दिन का मालिक अल्लाह ताला है। तो सोचो फिर क्या बनेगा जब, वलकद जीतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, तुम लाए जाओगे उस दिन फर्दन फर्दन, अकेले अकेले, जैसे हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था, अकेले आओगे, नंगे बदन नंगे पैर। इसे पता चला ना, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह ताला का था, तुम तो इसी तरह पैदा हुए थे, और आज भी देखो कहाँ गई वो तुम्हारी चीजें जिनको तुम कहते थे मैं, मेरी कुर्सी, मेरे पैसा, मेरा इकतदार, मेरे बैंक बैलेंस, मेरी जायदादें, मेरे अकाउंट, कहाँ है सब कुछ? ये सब इल्यूजन है, ये सब कुछ फहमियां हैं कि मैं, पता नहीं खाम ख्यालियां हैं कि मैं इन चीजों का ओनर हूं। कहाँ है फिर उस दिन, क्यों खाली हाथ उठ के आ गए? अब पता चलेगा तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था। हत्ता के जिस्म भी खिलाफ बोलने लगेगा, पता चलेगा जिस्म भी तो मेरा नहीं, और फिर क्या मेरा रह गया? सब कुछ अल्लाह ताला का था, है और होगा। ये तुम्हारा सिर्फ गुमान था कि मैं मेरा। सारी जिंदगी यही करते रहते ना, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मेरी चीज ये, मेरा चीज, मेरा वो, सब मैं और मेरा सब खत्म हो गया। ना मैं रही और ना मेरा। यहां तक ये तीन आयात जो हैं, ये तीन मैसेजेस देती हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की तौहीद का, नंबर 2 रिसालत का, और नंबर 3 आखरत का। ये 3 ईमानियात में से ये जो 3 ईमानियात है वो यहाँ पे कवर हो गए। तौहीद, रिसालत और आखरत, कुरान करीम में इन चीज़ों के ऊपर ही जोर दिया गया। पहली आयत तौहीद बताती है, क्योंकि रब एक है, आलमीन बहुत सारे जहान है, उन सारों के बहुत सारे रब नहीं है। रब तो पालने वाला तो खालिक और मालिक और पालने वाला तो एक ही है, तो तौहीद आ गई। फिर अर्रहमान और रहीम, इसमें इमाम राजी ने इसको बताया कि ये डायरेक्टली तो नहीं रिसालत के ऊपर बात है, लेकिन रहमान और रहीम, अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है, खुद सोचो वो अपने बंदों को क्या भटकने के लिए छोड़ देगा, कि उनको रास्ता ही नहीं पता और वो भटकते रहे जिंदगी में, गुमराहियों में पड़े रहे, हिदायत का उनको सामान ही ना मिले, उनको कोई रहनुमाई ना मिले, कोई गाइडेंस नहीं मिले, और एंड अप जहन्नम में हो जाए। ये तो नहीं ना रहमत। तो उसकी रहमत की ये लाजमी बात है कि उसकी ये रहमत का यानी मजहर है, कि उस या उसकी रहमत का हिस्सा है इस ये कि वो इंसान को रास्ता बता दे, दिखा दे, समझा दे, ताकि कहीं इंसान जहन्नुम में एंड अप ना हो जाए। वरना तो वो छोड़ देता अगर ऐसे ही, और सारे इंसान जो मर्जी जिसका दिल आता करता, वो तो सारे जहन्नुम में चले जाते, उनको रास्ता ही नहीं मिलना था। तो ये उसकी रहमत है कि उसने रसूल भेजे, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट इंसानों से बात नहीं करता, उसने रसूल भेजे जिन्होंने बंदों तक पैगाम पहुंचाया। तो इसमें रिसालत पर ईमान की बात है, ये अल्लाह की रहमत है कि उसने दुनिया में रसूल भेजे। अगर वो सिर्फ अपना कलाम भी भेज देता तो बात ना बनती, इसलिए कि रसूल आके समझाएगा, बताएगा लोगों को, उस पे चल के दिखाएगा अल्लाह के फरामीन के मुताबिक, तभी लोगों को समझ आएगी ना। तो रोल मॉडल्स भेज दिए और अपना पैगाम उनके जरिए भेजा। और तीसरा, ईमान बिलाखिरा मालिक यौमिद्दीन में, कि ये अल्लाह ताला मालिक है उस दिन का। अब देखें, जब इंसान अर्रहमान अर्रहीम पढ़ता है तो उसके दिल में क्या आ जाता है? पहले चलिए पहले से शुरू करते हैं। आयत 1 जब आपने पढ़ी, रब्बुल आलमीन, आपके दिल में क्या आया? वो पालने वाला, बड़ा आपकी हर चीज का ख्याल रखने वाला, आपके ऊपर मेहरबानियां करने वाला, नेमते निछावर करने वाला, मोहब्बत आई ना अल्लाह ताला की। फिर उसके बाद आप सोचते हैं, अल्लाह ताला ने तो इतनी मोहब्बत से मुझे पाला, मैंने क्या किया? इतनी नाफरमानी और गुनाह, और मैं अपने आप को गुनाहों से बचा ही ना सका। तो फिर आता है अर्रहमान अर्रहीम, तो इंसान को क्या आता है दिल में जब आप सोचते हैं अल्लाह इतना रहम करने वाला है, सारे गुनाह माफ कर सकता है, तो क्या आता है दिल में? बात आती है ना उम्मीद की, कि मुझे भी उम्मीद लग गई, अल्लाह तू तो इतना मेहरबान है, मैं भी जन्नत तक जा सकती, मेरे भी गुनाह माफ हो सकते। लेकिन जब इंसान इतना पढ़ लेता है ना सिर्फ, और वो ये सोचता है वो तो बहुत मेहरबान है, इतना 99 रहमतें उसके पास हैं, माँ से ज्यादा मेहरबान है, बस अब तो खुली छुट्टी मुझे मिल गई। जो इंसान ये सोचे, अब मुझे खुली छुट्टी मिल गई, मैं जो मर्जी करूं, हाँ जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, इससे बाज आ जाए, नहीं जी अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, आपको क्या पता, हम जैसे कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला गफूर रहीम। तो इस गलत फहमी में ना रहना कि वो रहमान और रहीम तो है, लेकिन वो मालिक यौमिद्दीन भी है, एक दिन भी है बदले का। देखिए इंसान को ये भी जरूरी है कि उसके पास अल्लाह ताला की मोहब्बत हो जो पहली आयत में, नंबर टू अल्लाह ताला से उम्मीद हो जो दूसरी आयत में, और नंबर थ्री अल्लाह ताला का खौफ भी होना चाहिए। ये अगर कोई इंसान सिर्फ यहां तक ही रहे कि बस वो तो रहमान और रहीम है और वो तो मेरा रब है और अब तो कुछ हो होगा ही नहीं, मैं जो मर्जी करता रहूं, तो फिर तो इस दुनिया के अंदर हर कोई अपनी अपनी चलाएगा और फिर देखो कि इस दुनिया के अंदर कोई अमनो अमान नहीं रहेगा। कोई जो चाहे करेगा, किसी के हकूक मारेगा, किसी को कत्लो गारत करेगा, किसी से छीना झपटी करेगा, जो मर्जी करेगा। वो तो सोचेगा मुझे खुली छुट्टी मिल गई। एक मुल्क भी इस तरह नहीं चल सकता। देखिए किसी मुल्क में अगर कह देना आप कि देखिए अब से सारा वक्त आपके साथ बहुत रहम किया जाएगा, किसी को पकड़ा ही नहीं जाएगा, जब पकड़ भी लेंगे तो हमने रहम कर देना, हमने सारों को ही छोड़ दिया करना, बस प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जो लोग कहते हैं ना हमारा खुदा तो बस लव है, एंड क्रिश्चियन ज्यादातर ये कहते हैं हमारा गॉड तो गॉड ऑफ लव है। सिर्फ गॉड ऑफ लव कहने से बात नहीं बन सकती, आप एक मुल्क भी नहीं चला सकते सिर्फ लव के साथ। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर होता क्या वहां पे, वहां पे मादर पितर आजाद होंगे सब, और सब अपना अपना कुछ करेंगे। क्यों नहीं दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा जिसमें कोई कानूनी हो? हर मुल्क में कोई ना कोई कानून तो है ना। कोई कानून किस लिए रखा जाता है? ताकि लोग सीधे रहें, क्योंकि इंसानों की ये फितरत है कि उनको बिल्कुल खुली छुट्टी मिल जाए तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर हर कोई अपनी मनमानी करता है। कानून का डर होना जरूरी होता है, सजा का खौफ होना जरूरी होता है, तभी सिस्टम सही चल सकता है। और अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर अगर ऐसा कर दिया जाए कि बस अर्रहमान और रहीम है, अब तुम लोगों को छुट्टी है, तो फिर देखें कि यहाँ पे रहना भी दूभर हो जाए। तो वो जो अल्लाह ताला का डर होना है वो भी जरूरी है, इसीलिए फरमा दिया मालिक यौम दीन, वो जजा और सजा के दिन का मालिक है। और इंसानों को इन सभी चीजों की जरूरत है, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी होनी चाहिए, उनके दिल में उम्मीद भी होनी चाहिए, कभी भी ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, और साथ खौफ भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए। से हदीस में आता है कि कोई एक बंदा होगा सिर्फ एक बालिश दूर रह गया होगा जन्नत से, और वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। इंसान को डर लगना चाहिए, इंसान को ये डर होना चाहिए कि अगर अंबिया और सहाबा और वो इतना ज्यादा डरते थे अल्लाह के नेक बंदे हो के, और इतना अल्लाह ताला के अजाबों के ऊपर उनको रो रो के हिचकियां बन जाती थी, तो मेरे तो गुनाह बहुत ज्यादा है, तो ये खौफ होना चाहिए, ये हेल्दी है, क्योंकि इसी से भी इंसान नेकियों की तरफ भागेगा और गुनाहों को छोड़ेगा। वरना तो इंसान कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, गुनाह करते भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे आजकल हमारे ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है, वो रहमान और रहीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो करते चले जाते। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, एक तरफ मोहब्बत है जो टॉप है, एक तरफ उम्मीद और एक तरफ खौफ, इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। ये तीनों बातें यहां पे बता दी गई। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अच्छा, अब ये जो यहां पे ये स्टेटमेंट आई है ना, अभी तक तो अल्लाह ताला की तारीफ हुई, उसकी सना बयान हुई, उसकी बुजुर्गी बयान हुई, अब जो बात आ रही है ये असल में हलफ है। हलफ उठाते हैं ना, जिसको कहते ओथ, ओथ लेते हैं ना, आप कभी लिया होगा आपने अगर ओथ, एक ओथ होता है फर्मा बरदा वफादारी का, फर्मा बरदारी का नहीं, वफादारी का। आप किसी मुल्क की सिटीजनशिप लेने लगते हैं तो वो आपसे ओथ लेते हैं कि आप हमारे वफादार रहेंगे, ये समझ लें एक वफादारी का ओथ है। इय्याका नअबुदु, इन बंदा कहता है सिर्फ तेरी नाबुदु हम इबादत करते हैं। अच्छा अब ये बात ऐसे भी हो सकती थी, नाबुदु का हम इबादत करते हैं का तेरी नाबुदु, ये जो लफ्ज है ना नाबुदु हम इबादत करते हैं, इसके आगे का लगा देना तो तेरी, ये भी सही जुमला है। लेकिन यहां पे आए या का, एक तो का पहले आ गया और या आया, सिर्फ तेरी यानी तेरे सिवा किसी और की हम इबादत करते ही नहीं है, बंदगी है तो सिर्फ तेरी। अब देखे ना जब इंसान ने ये पढ़ा ना कि मालिक यौमिद्दीन, तो उसके दिल में डर हुआ, अल्लाह मैं उस दिन कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा, तेरे सिवा तो मेरा कोई भी नहीं जो कि मुझे बचा सके, तू कि उस दिन का मालिक तो तू ही है। अब वो फौरन झुक जाता है, अल्लाह मैं तो सिर्फ तेरी इबादत करता हूं। या का कह के ना इसमें जोर पैदा किया गया, जब या कहते सिर्फ तेरी गुलामी करता हूं, बंदगी सिर्फ तेरी करता हूं, ये वो हलफ उठा रहा है, ये वो कसम खा रहा है, अल्लाह मैं जैसा भी हूं, गंदा हूं मंदा हूं गुनाहगार हूं, हूं तो सिर्फ तेरा ही ना, बहुत गुनाहगार हूं मगर तेरे सिवा तो मेरा कोई नहीं। सोचे सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है, और ये स्टेटमेंट जो है, ये आयत जो है, ये पूरी सूरह फातिहा का खुलासा है, ये है हलफ वफादारी का। और जिसने इस हलफ को पूरा कर दिया, जो उसने उठाया है, तो फिर उसकी निजात हो जाएगी कयामत के दिन, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज से फरमाया, ए मुआज तुम जानते हो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह ताला पर क्या है। हजरत मुआज फरमाने लगे अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का बंदों पर हक ये है। हक का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका राइट है, अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि वो उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। जब बंदे ये कर लेते हैं ना, अब बंदों का अल्लाह पे हक हो जाता है। अब बंदे वैसे तो अल्लाह पे कोई अपना हक नहीं जिता सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद इसको बता दिया कि अब बंदों का हक है अल्लाह ताला पर, यानी अब अल्लाह ताला की जिम्मेदारी बन जाती है क्या कि वो इन बंदों को अजाब ना दे। अल्लाहु अकबर, ये वो बंदे हैं जो सिर्फ एक अल्लाह की गुलामी के लिए अपने आप को सपोर्ट कर देते, खालिस उसके होते हैं, चाहे वो कितनी भी उनसे गुनाह हो जाए, लेकिन फिर जब वो अल्लाह की गुलामी में आ गए और उन्होंने कहा अल्लाह हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, हम अल्लाह के जिम्मे है कि फिर इनको अजाब न दे। हदीसे कुदसी में है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्ने आदम अगर तू मेरे पास आए और तेरे ऊपर इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं कि तेरे गुनाह से जमीनों आसमान भर जाए, लेकिन तूने मेरे साथ शिर्क नहीं किया तो मैं तेरे सारे ही गुनाहों को माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी, वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं होगी कि ये इसने तो इतने गुनाह की। अब नाबुदू इबादत, हम जो लफ्ज बोलते ना उसी से आइन बादा इबादत करना, हम तेरी इबादत करते हैं। इबादत क्या चीज होती है, क्या हमने कुछ इसको समझ लिया है? जब हम इबादत सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इबादत का मतलब है कि ये बस आपने नमाज पढ़ ली 5 दफा दिन में, साल में 1 दफा रमजान के रोजे रख लिए, ज़कात हज कर ली और तौहीद के अकीदे पे बस आपकी इबादत हो गई, पूरी हो गई इबादत, हम तो इबादत करते ही। हालांकि इबादत अब्द से है, अब्द कहते हैं गुलाम को, गुलाम वो होता है जिसका अपना कुछ नहीं होता, वो ना अपनी मर्जी से खाता पीता है, ना अपनी मर्जी से सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना कोई अपना खुद स्केड्यूल बना सकता है, कोई भी नहीं, सारा कुछ उसकी जिंदगी का ना उसके मालिक के हवाले होता है। जो वो मालिक कहता है उसने वो ही करना होता है। अब आप मुझे बताएं, जब हम ये कहते हैं यह करना अबुदू, तो क्या हम वाकई अल्लाह ताला के अब्द बन के रहते, या हर बात के ऊपर हमें एतराज आते हैं, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये क्यों होगा, वो क्यों गया, हर बात में हमने सवाल खड़ा करना होता। आप अगर किसी जगह के बॉस है ना, आपको कभी भी नहीं पसंद आएगा। आप खुद बताएं कि मतलब हमारे बच्चे ही हमसे पूछे, पहले हमें ये बताएं आपने ऐसे क्यों किया, पहले आप ये बताएं आप कहाँ जा रही हैं। अगर अच्छा कुछ किसी को पूछ भी लेना बच्चे, तो वो माएं भी नाराज हो जाती हैं, क्यों पूछ रहे हैं मुझे, आप क्यों जा रही हैं, क्या करना है आपने जाके, आपने ये चीज यहाँ पे क्यों ऐसे रखी हुई, इस चीज को यहाँ पे लटकाया क्यों है, आप इस वक्त क्यों नहीं उठी, आपको गुस्सा आता है कि तुम कौन होते मुझे पूछने वाले, मैं जैसे मर्जी करूं, हालांकि आप वो भी आपकी तरह के इंसान है, बस सिर्फ वो आपके बच्चे हैं, या आप बॉस हैं तो वो आपके सबॉर्डिनेट हैं। आप खुद सोचें कि इंसान की मिजाल कैसी है और उसके अंदर कितनी जुर्रत है और अल्लाह ताला कितना रहम है इन बंदों के ऊपर जो जुबाने खोलते हैं और कहते हैं ऐसे क्यों है, इस तरह क्यों होना चाहिए, फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों करके दे दिया, फिर उसने बनाया ही क्यों हमें, फिर उसने अगर ये करना था तो ऐसे क्यों किया, ये कैसी बातें हैं, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आती कि ये मुसलमान के मुंह से निकल ही कैसे सकता है, जो कहता है या कहना आबुदू, जो कहता है रब्बल आलमीन है, तू कैसे निकल सकता है, और गुलाम भी शायद सही लफ्ज नहीं है, बंदगी कहना सही लफ्ज है, क्योंकि गुलाम भी अपने आका से जो है ना कभी मोहब्बत नहीं करता होता, गुलामों को अपने आका से ज्यादातर आप देखें ना तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ये हमारा मालिक है, वो उससे नफरत करते हैं एक तरह से ना कि इसकी हम गुलामी में हैं, ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं बंदगी, तेरी बंदगी करते हैं, इबादत का मतलब बंदगी, तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें गुलामी भी है लेकिन इंतहा दर्जे की मोहब्बत भी है। इमाम इब्ने तैमिया ने इबादत का जो वर्ड है ना, इसका जो माना बयान किया ना, उन्होंने कहा उसमें दो चीजें होती हैं इबादत के अंदर, अब आप इसके ऊपर अपने आप को रख के देख, इंतहा दर्जे की मोहब्बत प्लस इंतहा दर्जे के जुल और खुजू, यानी अपने आप को झुका देना, जलील कर देना, बिछा देना, नीचा कर देना, ये है इबादत। खुद मुझे बताएं, जिनको इतने तराज आते हैं हर चीज के ऊपर, अब वो जाते तो उलमा के पास है और जाके कहते हैं ये क्यों ऐसे, वो क्यों ऐसे, पास चीजों का जवाब उलमा के पास नहीं होता, उलमा को अकले कुल थोड़ी है कि उनके पास हर चीज का जवाब हो कि अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों किया तो हम इसका जवाब दें, भाई तुम क्यामत के दिन जाके खुद ही पूछ लेना, तुम्हें इतने तराज आते हैं, अगर तुम कोई चीज छिन जाए तो ये क्यों छिनी मुझसे, ये क्यों ऐसे हो गया, फलानी चीज उसने ऐसे क्यों बनाई, अब इतराज करने लगे तो सात आसमान क्यों बना दिए, जमीन ऐसी क्यों बना दी, फलान चीज ऐसी क्यों, कुछ लोगों की जुबान पे हर वक्त ही कोई ना कोई बात के ऊपर इतराज, अपनी तरफ से सवाल कर रहे थे लेकिन उसके तरह इतराज होता है, जबकि इबादत के अंदर है ही क्या, क्या इंतहा दर्जे की मोहब्बत है आपको अल्लाह ताला से, कि उसकी मोहब्बत से ऊपर किसी की मोहब्बत ना, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कुरान करीम में, अल्लादीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं, ऐसे नहीं कि सारी दुनिया से तो आप मोहब्बत करें, अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए कि हम उसे सिर्फ जब हमें कोई मुश्किल हो तो फिर उससे हम दुआ कर लेते हैं, या हमें कुछ और चाहिए हो तो फिर हम उसे मांग लेते हैं, तो बस उसके लिए तो अल्लाह ताला है, बाकी मोहब्बत के लिए तो हमारे और रिश्ते हैं, कभी मोहब्बत भी करके देखी अल्लाह सुबहाना ताला से, जिस दिन आप अल्लाह ताला को पहचान लेंगे ना, आप उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस रब को ही नहीं पहचाना जो हमारा मालिक है और खालिक है, जो रहमान और रहीम है, जो हमारा रब है, हमारा पालने वाला। हमने उससे ही मोहब्बत नहीं करके देखी और झुक जाना, जो बिछ जाए झुक जाए, ये है इबादत। कितने झुके हुए हैं, कितने बिछे हुए हैं, अगर जुबान पे हर वक्त गिले शिकवे हैं तो क्या बिछे हैं। और हम तो अपने बॉस को उस तरह क्वेश्चन नहीं करते, खुदा की कसम, जैसे लोग अल्लाह ताला के बारे में क्वेश्चन करने के लिए आ जाते। वो अपने बॉस को जाके क्वेश्चन करे ना तो अगले दिन वो बाहर खड़े होंगे, डरते हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह से इनको डर नहीं लगता कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये होती है इबादत। इबादत सिर्फ ये 5 वक्त नमाज पढ़ ली, हमने ये कर लिया, हम तो बहुत अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। इबादत तो पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की बंदगी, कि जिंदगी के हर हर गोशे में अल्लाह ताला के कानून को मानना और उस पर चलना, ये है इबादत। तो इबादत का मफहूम समझना जरूरी है, और ये मोहब्बत के जज्बे के साथ की जाएगी। उसके कानून को मानना, उस पर चलना, तो क्या मानना ही बड़ा मुश्किल है। एक उन्होंने सर्वे किया कि अगर शरीयत नाफिज कर दी जाए आपके मुल्क में, तो हो इतने मुल्कों का, मुस्लिम ममालिक का सर्वे किया, हैरत है कि हर जगह 50% से भी कम लोगों ने कहा कि हाँ हम शरीयत को कबूल करने को तैयार। इतना डरते हैं अल्लाह के कानून से। तो ये कवानीन मानना, अल्लाह की इताअत करना, लेकिन मोहब्बत के साथ। और कितनी मोहब्बत, अल्टीमेट इंतहा दर्जे की, कि उससे ऊपर किसी की ना। तो सिर्फ तेरे से हम इसको अब खोल के देखें, आप सिर्फ तेरे से हम इंतहा दर्जे की मोहब्बत करें। ये जो आप इबादत का लफ्ज कह रहे हैं ना, अब इसको ओपन करें, इंतहा दर्जे की मोहब्बत हम सिर्फ तुझसे करते हैं, और इंतहा दर्जे की आजी, झुकाओ और बिछ जाना सिर्फ तेरे लिए। जो सारी ना उठा सके वो फिर बातें क्या बनाएगा, वो नाफरमानी कैसे करेगा। जो सारी ना उठा सके उसका तो सारी इताअत में झुकाव है, और मोहब्बत इतनी है कि मोहब्बत के साथ इताअत करता है। जो इताअत मोहब्बत के साथ होती है वो कितनी खूबसूरत होती है, वो कैसी प्यारी होती है। आपका एक बच्चा है, आप उसको कुछ कहते हैं करने को, वो हूं वहां करके करता है, और मुंह चढ़ा के करता है, और बातें बना के करता है, और उठता ही नहीं है, और बड़े, और एक है मोहब्बत से भाग भाग के, उसको मोहब्बत इतनी है वो भाग भाग के करता है। क्या अच्छा लगता है आपको। हम अल्लाह ताला की बाज दफा इताअत कर भी लेते हैं, बात काम में मान भी लेते हैं उसके हुक्मों को, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कूड़ा नहीं होती है, अच्छा नहीं लग रहा होता मानना भी, मोहब्बत नहीं होती। तो मोहब्बत के साथ रोजे भी रखने लगते, हाय वाय के साथ, कहाँ गई आपकी मोहब्बत। हाजे तो आए मुसीबत, हाय मसला, आए गर्मी, आए क्या से करेंगे, हर चीज में ही हमारे लिए मुश्किलात हैं। जहां पे मोहब्बत होती है वहां पे मुश्किल तो कुछ रहती ही नहीं, वहां पे इंसान की स्पीड भी तेज हो जाती है, एनर्जी भी आ जाती है, मजा भी आने लगता है। मोहब्बत जो होती है, कभी मोहब्बत का मजा चख के देखा हो हमने तो फिर हमें पता चले ना, हमें मोहब्बत का मजा ही नहीं कभी चखा, तो फिर इताअत में मजा कैसे आएगा, इबादत में मजा कैसे आएगा, नमाज में मजा कैसे आएगा, अल्लाह के जिक्र की लज्जत कैसे मिलेगी। ये तो लज्जतें उनको हासिल होती हैं जिनको मोहब्बतें होती हैं, इसीलिए फिर वो थकते भी नहीं, इसीलिए फिर वो रुकते भी नहीं। तो इया का नाबुदू ऐसे ही है। अब देखें, वैसे तो हम की कोई मिसाल भी नहीं दे सकते, सिर्फ ये ऐसी मिसालें इसलिए देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ी सी बात समझने में आसानी हो जाए। जैसे कोई लिखता है ना, महबूब अपनी महबूबा को लिखता है ना, सिर्फ तुम्हारा फलां फलां, लेटर के एंड में लिखा होता है ना सिर्फ तुम्हारा, वो ये क्यों नहीं लिख देता तुम्हारा भी और मैं औरों का भी, फलानी का भी और फलानी का भी और तुम्हारा भी, तो क्या हो गया, तुम्हारा तो हूं ना, नहीं सिर्फ तुम्हारा लिखता है। और वो महबूबा भी चाहती है ये सिर्फ मेरा हो, और वो भी चाहता है ये सिर्फ मेरी हो। तो अल्लाह ताला चाहता है ये बंदा सिर्फ मेरा हो, औरों का नहीं, कि अल्लाह का भी हो जाऊं। और चलो अल्लाह ताला की भी इबादत कर ली, अब मानना तो ठीक है, हम अल्लाह की भी मानते हैं, लेकिन लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी है। अल्लाह की छोड़ के फिर दुनिया की भी मानते हैं, फिर अल्लाह की छोड़ के फिर खानदान की भी मानते हैं, फिर अल्लाह की छोड़ के बच्चों की भी माननी पड़ती। या का तो नहीं ना हुआ, फिर सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, यानी सार से टॉप पे तेरी बात है, बाकियों की बातें अल्लाह ताला की बात से मैच करें, वेल एंड गुड, नहीं मैच करती, उनकी बातें छोड़ देनी, अल्लाह ताला की बात नहीं छोड़नी। और होता क्या है, हम अल्लाह सुबहाना ताला की बात छोड़ देते हैं और उनकी मान लेते हैं, क्योंकि उनकी भी तो चलनी है ना, फिर उनके साथ भी तो गुजारा करना। तो जब या का नाबुदु कह दिया, तो आपने समझ लिया, ये कह दिया सिर्फ तेरी, सिर्फ और सिर्फ तेरी, ये जो जैसे वो नीचे लिखा होता है लेटर में सिर्फ तुम्हारा, इसी तरह आपने कह दिया सिर्फ तेरा अल्लाह, मैं सिर्फ तेरा हूं, मैं और किसी का नहीं, सिर्फ तेरा हूं, मेरा तो तेरे सिवा कोई और है ही नहीं, मैं किसी और का हूं ही नहीं तेरे सिवा, मैं तो सिर्फ तेरा बंदा हूं, ये हलफ उठा लिया, आज भी तेरा हूं। और नाबुदू, ये देखें जब ये शुरू में नून आ गया ना, तो ये फेले मुजारे बन गया, थोड़ी सी आप इस चीज को समझ लें तो आगे आपको आसानी होगी। फेले मुजारे का मतलब ये होता है अरबिक के अंदर कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के लिए एक ही वर्ड होता है, अलग अलग नहीं होते। जैसे हम उर्दू में तो प्रेजेंट के लिए मैं आती हूँ और मैं आऊंगी, ये फ्यूचर के लिए होगा, लेकिन अरबिक के अंदर एक ही लफ्ज में हाल और मुस्तकबिल दोनों के माने होते हैं। तो जब हम नाबुदू कहते हैं तो ये मुजारे या मतलब, इसमें मुजारे का मतलब होता है कि इसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों टेंस हैं। तो तेरी इबादत मैं आज भी करती हूँ और करती रहूंगी, आपने कसम खा ली, अहद कर लिया, हलफ उठा लिया आपने, मैं करती रहूंगी, ठीक है, सिर्फ आज ही नहीं तेरी बंदी, कि आज तेरी बंदी हो, मुसल्ले से उठी तो फिर अल्लाह की बंदी नहीं, फिर अल्लाह की इबादत क्या, बस वो तो मस्जिद में जाते हैं तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, रमजान आता है तो अल्लाह की इबादत करते, नहीं करती रहूंगी, अल्लाह हू अकबर। तो बड़ी मोहब्बत की ये बात है, इसीलिए जब इंसान यहां पहुंचता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, बस अब मेरा बंदा जो भी मांगेगा मैं उसको अता करूंगा, अल्लाह हू अकबर। और आगे या के नस्ताइन को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे, यहाँ तक ही आज रखते हैं हम। और जो पढ़ा है, जैसे मैंने आपको कहा, उसी को आपने देखना है, उसी को आपने पढ़ना है दोबारा घर पे, कि इसमें आज मैंने क्या सीखा, तो अमल की बातें एंड में आपने जरूर लिखनी, आज अमल की बातें क्या हैं, रहमान की रहमत के नज़ारों को महसूस करें और उन पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कम अज कम हर दिन तीन चीजों को अपने इर्द गिर्द देखें और उसके ऊपर रब की रहमत को महसूस कीजिए, फिर आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या अपने हर काम, हर चीज के ऊपर, हर बात के ऊपर, चाहे मेरी मर्जी की हो या नहीं हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ या नहीं, नहीं कहती तो अमल की बात में लिख लीजिए कि मैंने आपसे कहना है मालिक यौमिद्दीन से, सोचे कि एक दिन है जो बदले का है, मैं आज जो बो रही हूं क्या मैं इसको काटने के लिए कल तैयार होंगी, आज मैं क्या क्या मेरे एक्शंस हैं, यही मुझे कल इनका जवाब देना होगा, इन्हीं का बदला तो मिलेगा मुझे, या का नाबुदू में तो बहुत कुछ सोचने का, मैंने हलफ तो उठा लिया, वफादारी निभा रही हूं या नहीं, इबादत का माना क्या है, इबादत के वाकई माने को मैंने समझा भी आज तक या नहीं, और मैं जैसे माना है उसके मुताबिक मैं इबादत कर भी रही, या मेरे लिए सिर्फ ये एक वर्ड है इबादत इबादत आज तक सुनते रहे। अल्लाह ताला हमें अपने मुखलिस बंदों में शामिल फरमा लें। तिलावत सुनिए यहाँ तक। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،